आज अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉर फेसिंग चैलेंजेस। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तक आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक हम चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेन स्पीकर्स हैं प्रोफेसर बीके मुकेश, जो कि जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग राजस्थान जोन के, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर नीनू टेक चंदानी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। सब तालियां बजाते रहेंगे। उसके बाद आज के हमारे सेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर पी एन शास्त्री, जो कि वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली से, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि अपना स्टेज पर आकर के स्थान ग्रहण करें, तालियों में कोई कंजूसी नहीं करें, ताकि जो बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है वो रिचार्ज हो जाएगी। उसके बाद हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें स्टेज पर। तो आज हम इस सेशन की शुरुआत 2 मिनट उस परमात्मा की याद से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने गीत सुना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो चैलेंजेस अपने आप ही जीवन से खत्म हो जाएंगे जब हम उस पिता को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। आज हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, परिस्थितियां बढ़ रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें कोई घर बार छोड़ना है या बाहर जाना है, जंगलों में जाना है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने घर में रह करके इन वैल्यू एजुकेशन को, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाना है, ताकि हम चैलेंजेस को फेस कर सके। क्योंकि दिनों दिन जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिप्रेशन, टेंशन आदि बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आपस में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्पीकर्स का बैजेस और बुकेस के साथ स्वागत करें, क्योंकि ये भी एक परंपरा है कि हमारे घर में आए हुए मेहमानों का हम अपने तहे दिल से स्वागत करें। तो सबसे पहले हमारे बीच में प्रोफेसर पी एन शास्त्री जी की, जो कि वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। जब भी हम दिल्ली में इनसे मिले हैं तो बहुत ही प्यार से मिलते हैं। और साथ में हमारी बहन डॉक्टर नीनू टेक चंदानी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और हमारे ब्रदर मुकेश, इन सबका जोरदार तालियों से स्वागत। तो अभी मैं हमारे ब्रदर मुकेश जी से अनुरोध करूंगी कि जो आज का हमारा विषय है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉर फेसिंग चैलेंजेस, आज इस विषय के बारे में हमें बताएं। तो भाई साहब का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। ही इज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ थॉट लेबोरेटरी। ही हैज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट ट्राई योगा थॉट लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इन जयपुर। ही इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारीज फ्रॉम लास्ट 23 ईयर्स। He has done MBA in Self-Management and Crisis Management, MSc in Value Education and Spirituality. Presently, he is working on many techno-spiritual projects. It plays a vital role in blending spirituality and technology in new dimension. He is a professor in Jaipur Engineer College and Research Center. So, my brother se anurodh karungi ki aaj ke vishay ke bare mein hame bataein. क्योंकि एज अ प्रोफेसर ये इनको पता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हुए कैसे चैलेंजेस आते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं तो कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अपने चैलेंजेस को फेस करें, इसके बारे में आज हमें बताएंगे ब्रदर मुकेश जी।
गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। ज्ञान सरोवर की इन खूबसूरत वादियों में माउंट आबू के सुंदर स्थान पे ज्ञान के मनीषियों, महर्षियों का अभिनंदन है, स्वागत है। और इस दूसरे सत्र में जिसका अर्थ है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, एक छोटा सा प्रश्न आता है लाइफस्टाइल की जैसे ही बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफस्टाइल एंड लिविंग स्टाइल। एक होती है जीवन शैली, लाइफस्टाइल। इसको जनरली मिसकंसेप्ट किया जाता है लाइफस्टाइल को लिविंग स्टाइल के साथ में। सो जनरली जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो ये क्या समझ में आता है कि शायद ये चश्मा कैसा लगाते होंगे, कपड़े कैसे पहनते होंगे, शूज कैसा होगा, अच्छी बहुत इंग्लिश बोल सकते होंगे, ये कहीं ना कहीं हम इसको लाइफस्टाइल से जोड़ देते हैं। बट जो ये बात कर रहे हैं ये सारी चीज किसके अंडर में आती है? इट इज लिविंग स्टाइल। सो लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टाइल इज अ डिफरेंट वन देन दी लाइफस्टाइल। लाइफ मतलब हमारे जीवन मूल्य कैसे हैं, किन जीवन मूल्यों के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, वो है लाइफस्टाइल। तो एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल क्या हो, एक जीवन फरिश्तों जैसा जीवन क्या हो, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में 20-25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई एक सिंगल पॉइंट आपके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तन कर दे। तो हम शुरू करते हैं स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल टॉपिक को। एक तो है हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ और एक है स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? मटीरियलिस्टिक लाइफ मींस सोचना तो नहीं चाहते थे, आ गया, बोलना नहीं चाहते थे, बोल दिया, कहना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे। यदि चीजें हमारे अपने जीवन के कंट्रोल में नहीं है, इट मींस आवर लाइफस्टाइल इज अ मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल। यदि इन चीजों पे हमारा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बनके अथॉरिटी से राज्य कर रहे हैं, इट मींस वी आर अ स्पिरिचुअल लाइफ। तो स्पिरिचुअल लाइफ हमारी कैसे बने, इस पर डिस्कशन करेंगे। आप यहां पर इस पिछले पिक्चर में आप देख रहे हैं सोल इज द किंग। पहला जो आप पिक्चर देख रहे हैं सोल इज द किंग, बट जो सारे हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स हैं उन्होंने सारी लीडरशिप ले ली है और सोल पीछे बैठी है, परेशान है। यानी हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए हैं, वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ अवर ओन सेंसुअल ऑर्गन्स। और सेकंड वाला आप देखेंगे वी आर अवर मास्टर ऑफ ओन सेल्फ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान हूं। तो ये सेकंड है जब हमारी सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में है। देखते हैं आगे। अब कुछ बातें हैं जो जीवन शैली का हिस्सा हो। सबसे पहला बात कुछ लेते हैं, लगभग 20-25 पॉइंट हम कवर करेंगे बहुत जल्दी में। पहला, वी आर ए यूनिक सोल। कभी भी दुनिया में हम किसी को कंपेयर नहीं करें। यदि ये कहीं किसी को कंपेयर करते हुए देख भी लें तो समझ लीजिए स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है। इसने ऐसा किया, उसने यहां। जनरली बहुत स्थान पर ऐसा रहता है कि हम वहां गए थे तो वहां ऐसा हुआ था, यहां ऐसा हुआ, सो दिस इज बेटर। हमें कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड ओनली वन यूनिक। हम जो दुनिया में केवल और केवल अकेले हैं, यूनिक हैं। द सेकेंड वन, फॉरगिव एंड फॉरगेट। दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जब तक हमारे पास पावर ऑफ फॉरगेटफुल नहीं होगी तो शायद हम फॉरगिव कर भी नहीं पाएंगे, और जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे तो चीजों को भूल भी नहीं पाएंगे। दोनों चीजें जुड़ी हैं। इफ वी आर नॉट फॉरगिविंग देन वी विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट, एंड इफ वी आर नॉट फॉरगेटिंग देन वी विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव। और जब तक क्षमा नहीं कर देंगे ना, अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी लेकिन जब तक हमने उनको क्षमा नहीं किया ना, वो दिमाग से गुजरेंगी नहीं, निकलेंगी नहीं। तो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बनाने के लिए जरूरी है इन चीजों को दिमाग से निकालें। नेक्स्ट, हेल्पिंग लाइफस्टाइल इज ऑलवेज अ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। देन पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अवॉइड मल्टीटास्किंग, दीज टू विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स। हमारे यहां ब्रह्मा कुमारीज की एक दादी प्रकाशमणि जी के बारे में आप बहुत लोगों ने सुना होगा। दादी प्रकाशमणि वॉज द फाउंडर, वॉज द हेड ऑफ दिस कंप्लीट ब्रह्मा कुमारीज टिल 2007। और उनकी एक बहुत सुंदर बात, इस हॉल का नाम भी उन्होंने रखवाया था हार्मनी हॉल। हार्मनी यदि आपके संबंधों में, रिलेशन में, आपस में नहीं बन रही है, तो उन्होंने एक बात कही थी, हार्मनी मींस हारमानी। जीवन में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जहां आप हार कर भी जीत जाते हैं। सो हार्मनी लाने के लिए हार मान लेना भी कई बार जीत में बदल देता है। नेक्स्ट, घटनाओं को चैलेंजेस के रूप में ले रहे हैं या थ्रेट के रूप में ले रहे हैं, यह डिसाइड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल है या मटेरियलिस्टिक है। कई बार क्या देखेंगे, कॉलेजेस और ऑफिसेज के अंदर आपकी स्पेस को, बैठने की स्पेस यहां पर है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्पेस चेंज कर दिया कि नहीं कल से आप यहां बैठेंगे, इतनी सी चीज को भी लोग थ्रेट के रूप में ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। सो घटनाएं, यदि ये एक दिमाग में बात है, GBB, अपने माइंड में लिख के रख लीजिए दीज थ्री लेटर्स, GB एंड B, गुड better, best. Whatever happened in the past was good. Today is better. And our future will always be best. It is destined. Jo hua achha hua, jo ho raha hai, aur bhi achha ho raha hai, aur jo hoga wo achhe se achha hoga. Good, better, best. Is teen cheezon mein yakeen karna means positive mindset. Next is avoid blaming. Spiritual lifestyle matlab ek योगी व्यक्ति कभी किसी भी व्यक्ति पर ब्लेम नहीं है. सिचुएशंस ऐसी आएंगी सामने वाला गलत होगा, बट तब भी हमें सामने वाले को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलतियां हम भी तो हैं, हम भी एक इंसान है, हमने भी कभी गलतियां की थी. गलती है, सुधरेंगे, सीखेंगे, बट विल नेवर ब्लेम अदर्स. एडवांटेज इन एवरीथिंग. एडवांटेज इंडियन चाइनीज स्टाइल के अंदर एक ये पॉइंट आता है कि हर ब्लैक चीज में भी एक छोटा सा छोटा व्हाइट पॉइंट है, यानी एक आशा की किरण है. घनघोर अंधेरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी आशा की किरण होगी, और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, शायद कहीं उसमें भी कुछ काला दाग रह जाए. तो हमें देयर इज एडवांटेज इन एवरीथिंग. नेक्स्ट इज मैनेज अवर टाइम बेटर. एक योगी का टाइम मतलब उसका एक एक क्षण कीमती है. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वन हुआ हार्ड टाइम पासर्स, मतलब टाइम पास ही नहीं हो रहा कभी उनसे, आप बात करेंगे क्या करें, इतना टाइम है आजकल क्या कर रहे हो, आप पूछोगे बात भी करोगे तो विल से क्या कर रहे, टाइम गुजार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं. और एक ऐसे होंगे जिनसे बात करोगे तो क्या कहेंगे, वो जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है. सो दीज आर टू टाइप ऑफ पीपल. एक मिलेंगे जिनको जहर खाने की फुर्सत नहीं है, और एक है जिनका टाइम पास नहीं हो रहा है. तो स्पिरिचुअल या योगी जीवन शैली का पहला हिस्सा वो लोगों के लिए अवेलेबल भी है, बट उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है. दोनों बात साथ साथ है. ही इज ए बैलेंसिंग लाइफ स्टाइल. वो हार्ड टाइम पासर्स भी नहीं है, हार्डली एनी टाइम भी नहीं है, कि लोग दो तरह के, इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, बट वी आर द बेस्ट मैनेजर ऑफ टाइम्स. नेक्स्ट इज बहुत लंबा समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत लंबे समय तक कुछ बंद दरवाजों की तरफ देखते रहें, और जो दरवाजे नए हमारे अपॉर्चुनिटीज के खुल रहे हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ही न जाए. यानी कि फॉरगेट द पास्ट. कई बार पास्ट इतना ज्यादा विचलित कर देता है कि हम पास्ट की बातों को देखते सोचते सोचते घंटों गुजार देते हैं. सोचिए यदि हमने कभी एक गाड़ी चलाई, और गाड़ी चलाते चलाते समझिए कि गाड़ी चला रहे हैं तो बैक साइड का एक उसमें मिरर होता है, आईना होता है. क्या हम चला सकते हैं गाड़ी बैक साइड के आईना को देख करके? ठीक वही है. यदि हम पास्ट को सोचते सोचते जीवन गुजार रहे हैं, इसका मतलब हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें सामने देखने की जगह साइड मिरर में देख रहे हैं, एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट. नाउ नेक्स्ट इज कुछ चीजों के लिए टाइम इज द बेस्ट हीलर. कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उनके लिए आपको अपने आप को समझाना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है, और समय के साथ ही हील होती है, सामने वाले की भी, हमारी खुद की भी. यदि एक योगी होगा तो तुरंत हील होगी, लेकिन मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल होगा और हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाला किस माइंडसेट में है, कब किसने कही थी कोई बात, समझ लेंगे तो सारी बात. यानी कि कब किसने किस माहौल में कही थी कोई बात, हमें मन मन करता रहता है बार बार, देखो उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, पर कब किसने किस माहौल में कही थी कोई बात, समझ लेंगे तो समझ जाएंगे सारी बात. सो एंड नेक्स्ट इज डोंट थिंक अबाउट रिवेंज. ब्रह्मा कुमारी इसका एक स्लोगन है, बदला नहीं लेना है, हमें बदल कर दिखाना है. बदला नहीं लेना है, हमें बदल कर दिखाना है. और इस दुनिया में जो हम हैं रोल प्ले कर रहे हैं, हम कठपुतलियां हैं और इस संसार में रोल प्ले कर रहे हैं. यदि हमें रोल किंग का मिला है, यदि हमें रोल किंग के अलावा लीस्ट से लीस्ट, चाहे नौकर का रोल मिला है, चाहे मालिक का रोल मिला है, इट डजंट डिपेंड. हीरो हीरो ही होता है. यदि वो नौकर का रोल मिलता है तो भी उसकी सैलरी अच्छी होती है, और वो किंग का रोल मिलता है तो भी उसकी सैलरी अच्छी होती है. यानी कि हम अपने जीवन में रोल को किस तरह प्ले करते हैं ये इंपॉर्टेंट है. विच रोल वी आर प्लेइंग इज डजंट मैटर. नेक्स्ट इज लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड। एक छोटी सी स्टोरी आती है, आपने सम्राट सिकंदर के बारे में सुना होगा, और सिकंदर के बारे में एक बात फेमस थी कि जब वो दुनिया से गया तो उसने एक बात कहा था मरने से पहले कि मेरे दोनों हाथ कॉफिन से बाहर रखना। क्यों? कि जब दुनिया वाले मैं जाऊं तो ये सोचें कि सम्राट सिकंदर जिसने सारे जहान को जीता था गया था तब वो भी खाली हाथ गया था। तो जब हम भी कभी जाएंगे तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। इसीलिए कहते हैं कफन में जेब नहीं होती और कॉफिन में अलमीरा नहीं होती। लाइन को समझिएगा, कफन में जेब नहीं होती और कॉफिन में अलमीरा नहीं होती। ले जाने के लिए कोई स्टोरेज वाली अवेलेबिलिटी नहीं है। जो हम ले जा सकते हैं साथ में वो क्या है? अपने कर्मों के खाते को ही ले जा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा साथ। सो नेक्स्ट इज, एक होता है ऑब्जर्विंग द थॉट पैटर्न ऑफ द सेल्फ और एक होता है ऑब्जर्विंग द थॉट पैटर्न ऑफ द अदर्स। दोनों का मतलब आप समझेंगे। कभी भी कोई घटना हुई तो हम अपने आप को चेक कर रहे हैं या सामने वाले को चेक कर रहे हैं? देखो सामने वाले ने ऐसा कहा है, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो इसका मतलब वी आर ऑब्जर्विंग द थॉट पैटर्न्स ऑफ अदर्स। एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल वाला व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन शैली वाला व्यक्ति, फरिश्तों जैसे जीवन जीने वाला व्यक्ति सदा अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, दूसरों के थॉट पैटर्न पे डिपेंडेंट नहीं होता। एक सेंटेंस है, गिव हैप्पीनेस टेक हैप्पीनेस, लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं है। इसी सीरीज में ये ठीक है, गिव हैप्पीनेस टेक हैप्पीनेस, लेकिन यदि उल्टा कर देंगे और ये सोचें कि पहले खुशी ले लें फिर खुशी दें, वो नहीं। ये सिद्धांत ये है कि यदि हमें कभी किसी मोड़ पे लगता है कि मेरे जीवन में खुशियां नहीं है, इसका मतलब हमने देने में कहीं ना कहीं कमी रख दी है। दूसरा, क्लियरिंग द पास्ट अकाउंट्स। कभी कुछ बीमारी आ जाए, परेशान हो जाए, ऐसा लगे कि नहीं यार अब तो ऐसे स्टेशन, ऐसी चीजों पे भी ब्रह्मा कुमारी इसमें तो बात विशेष रूप से सिखलाई जाती है कि यदि आप बीमार भी हैं तो क्या समझें, वी आर क्लियरिंग आवर पास्ट अकाउंट्स। ऐसा नहीं बोल सकते उस केस में भी, अरे यार मेरी तो किस्मत में ये लिखा था क्या, सब कुछ मेरे साथ ही होना था क्या। सो नहीं, वी आर क्लियरिंग आवर पास्ट अकाउंट्स, तो भी हम फायदे में ही हैं। कहीं ना कहीं चीजें, समस्याओं को, परेशानियों को हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को क्रॉस आउट कर रहे हैं, उसे क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, मेरा पर्स उसके पर्स से छोटा क्यों? मेरा पर्स उसके पर्स से, ये क्या है? जेलसनेस। तो स्पिरिचुअल लीडर्स और स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाले, और स्पिरिचुअल भी बहुत बड़ी होगी बात, साधारण जीवन जीना भी हम चाहते हैं तो भी हमें जेलसनेस को खत्म करना। और ये पहली बात आ गई, इससे पहले यदि हमने कंपेयर करना खत्म कर दिया तो हमारे जीवन में आधी समस्याएं समाप्त। एंड सरेंडर टू सुप्रीम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमारा वश नहीं चलता, और जब हमारा वश नहीं चलता तो उसके लिए क्या चीज टाइट है? अपने आप को सरेंडर करना उस परमपिता परमेश्वर के। वो मेरा पिता है ना, उसने मेरे भाग्य में जो लिखा है वो बेहतरीन से बेहतरीन लिखा है, इस बात पे पक्का यकीन हूं। एक गांव था, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। अब गांव में वो व्यक्ति रहता था, जब उसका एक हॉस्पिटल में था, उसके एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। जब वो बेटा पैदा हुआ छोटा सा, तो एक जबरदस्त भविष्यवाणी हुई, आसमान में बादल गड़के और भविष्यवाणी हुई कि ये व्यक्ति सदा ही बेहद गरीब। वो देखा कि उसने एक फरिश्ता सा धरती पर आ रहा है, कुछ लिख रहा है, तो वो लिख रहा था उसकी भविष्य को। जब भविष्य लिखते हुए देखा तो उसने उससे पूछा, मुझे इसका भविष्य बताओ। तो बोला, रहने दो, आप क्या करोगे जान करके। लेकिन वो पीछे पड़ गया भविष्य जानने के लिए। तो उसने बताया कि इसका भविष्य ऐसा है कि जीवन भर गरीबी में रहेगा, गरीबी में पैदा होगा, गरीबी में मरेगा, सब कुछ इस तरह का बता दिया। वो व्यक्ति पिता था बेचारा, बहुत परेशान हुआ, बोले यार ऐसा कैसे। तो बोले, कुछ तो करो मेरे बेटे के लिए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कोई सॉल्यूशन दो, इतना सा दो कि उसको खाने के लिए दो वक्त की रोटी तो कम से कम नसीब हो। तो उस देवता को लगा कि चलो यार ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके पास दो बोरी अनाज हमेशा रहेगा। उसका पूरा जीवन निकलता गया निकलता गया, वो 20-21 साल का हो गया, हमेशा पूरा गरीबी में जीवन निकला। पिताजी की भी डेथ हो गई। एक दिन कोई एक पहुंचे हुए साधु संन्यासी वहां से निकल रहे थे, उसने अपनी कुंडली उनको दिखा दी, बोले देखो मेरा ऐसा ऐसा है। तो कुंडली देखते ही उन्होंने साधु संन्यासी ने कहा यार तुम्हारा लाइफ तो बड़ा अच्छा है, गरीबी तो नहीं होनी चाहिए तुम्हारे। बोले नहीं मैं तो हमेशा परेशान रहता हूं और गरीबी हूं। तो बोले ऐसा है आपके घर में दो बोरी अनाज की पड़ी होगी। बोले हां पड़ी है। तो बोले जाओ उसको जाकर बेच दो। बोले मैं वो दो बोरी तो बची है उसको भी मैं बेच दूंगा तो कल क्या होगा। बोले आप बेच दीजिए। वो गया जाके उसने दो बोरी अनाज की बेची, कुछ पैसा आया उसके पास, अगले दिन देखता है फिर दो बोरी पड़ी है। क्योंकि ये एक डेस्टिनी उसके लिखी थी कि वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा, दो बोरी अनाज हमेशा उसके पास होंगी। हम उस बात को कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे पिता परमात्मा ने लिखा है तो बेहतरीन से बेहतरीन लिखा है, ये कॉन्फिडेंस है तो फिर कहीं रुकेंगे नहीं। सो डोंट फील जेलस विद अदर्स एंड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। यदि हमने 45 मिनट अपने लाइफ में डेली एक रूटीन बना लिया कि सुबह से शाम तक 45 मिनट से एक घंटा, जैसे शरीर के लिए निकालते हैं, शरीर के लिए भी कहते हैं कि आपको यदि अच्छा शरीर चलाना है 60 की उम्र में 70 की उम्र में घुटने काम करते रहें, दिल ठीक चलता रहे तो क्या जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा एक्सरसाइज जरूरी। इतना ही यदि हम मन के लिए भी निकाल लेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चलेगा। सो रेगुलर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन जिसके लिए हम सब यहां आए। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। क्या कि कोई भी बात हो जाए, इस बात में मैं अपना खुद का एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। हमने तो अपने डिपार्टमेंट में यह बोला हुआ है नाराज होना आपकी जिम्मेदारी है, आपका राइट है, मनाना हमारी जिम्मेदारी है। नाराज अपने दोस्तों को सबके बता दीजिए अच्छे से कि नाराज होना आपका राइट है, क्योंकि आप मुझे अपना समझते हैं इसलिए आप मुझसे नाराज हो रहे हैं, और मनाना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। यदि कॉम्प्रोमाइज करने की आदत हो जाएगी ना तो रिश्ते बड़ी आसानी से, बातें तो होंगी। आपको ये सोचे कि हम दो जने साथ रह रहे हैं तो कभी बातें नहीं होंगी, बातें तो होंगी, लेकिन यदि कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा तो रिलेशनशिप स्वीट मान लो नहीं भी हुए तो 10 मिनट बाद तो वापस स्वीट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आज तुमने मुझे कह दिया ना मैं इस जिंदगी में दोबारा तुमसे बात ही नहीं करूंगा, सो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवॉइड स्ट्रेटर्स, कुछ स्ट्रेसर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जिनसे आप बात करो तो वो अपना रोना रोएंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे। ऐसे स्ट्रेस पैदा करने वाले और स्ट्रेस देने वाले लोगों से दूर दूर से राम राम, दूर दूर से नमस्ते। अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक जिसको पता है कि आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी ही होगी। आपने राजनीति का टॉपिक ले लिया और मान लीजिए एक बीजेपी और कांग्रेस लेकर के आप टॉपिक लेकर के बैठ गए, अपोजिशन और ये टॉपिक लेके, निश्चित मानिए जब आप उठेंगे तो आपको भी स्ट्रेस होगा, सामने वाले को भी स्ट्रेस होगा, दोनों स्ट्रेस में ही उठेंगे। सो ऐसे हॉट बटन टॉपिक्स को ट्राई करके अवॉइड करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अब ये बात है फीलिंग कहां एक्सप्रेस करनी चाहिए। दिस इज अ गुड पॉइंट कि हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है कि यदि फीलिंग को एक्सप्रेस आपने इस दिल को बिल्कुल खोल के रख दिया और सब जगह बताना शुरू कर दिया तो भी गड़बड़ है। फीलिंग एक्सप्रेस होनी चाहिए। आप देखो यहां पर कभी मेडिटेशन रूम में आप बैठे होंगे तो मेडिटेशन रूम में एक बॉक्स रखा हुआ मिलेगा आपको, और उस बॉक्स में क्या लिखा है देखा किसी ने, बॉक्स के आगे कुछ लिखा है बाबा को पत्र, और बाबा किसको कह रहे हैं, सुप्रीम फादर, अपने दिल की बात सारी ना। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को कह दें जो चार जगह पे फैलाए नहीं और जो उसको रिस्पॉन्ड भी करे, जो समस्या का समाधान भी बताए, तो उस ऊपर वाले से बढ़िया कोई दोस्त नहीं। अपने दिल की सारी भावनाओं को किसी बोतल में बंद करके चिट्ठी में लिख के आपने मान लो बोतल में बंद किया और समंदर में फेंक दिया, कई लोग करते हैं ऐसा, या अपने शेयर करेंगे तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन एक ईश्वर को बताने से समस्याओं का समाधान मिलता ही है। गांधी जी ने एक बार कहा था भोजन करो और पेट ना भरे, पानी पियो और प्यास ना लगे, ये प्यास लगे पानी पीने के बाद भी प्यास लगे और भोजन करने के बाद भी पेट ना भरे, ये हो सकता है, लेकिन ईश्वर को दी गई एक अर्जी स्वीकार ना हो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पेयर डाउन टू डू लिस्ट। पेयर डाउन मीन्स पेयर मीन्स कट, कट डाउन टू डू लिस्ट। कई बार क्या करते हैं हम कल के लिए लिस्ट बनाना शुरू करते हैं पहले दिन रात को कल मैं नंबर एक ये कर लूंगा, टू थ्री फोर, एक 20 काम की लिस्ट बना ली। मन अंदर से पहले से कह रहा है कि 20 हो नहीं सकेंगे, करेंगे हम पांच ही, लेकिन एक लिस्ट 20 कामों की बना लेते हैं और कल के लिए ही बना के रखते हैं। यदि हम अपनी क्षमताओं से लंबी लिस्ट बना लेंगे तो खुद को टेंशन में डालेंगे और जितना काम करना है उसका आधा करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आप 10 कर सकते हैं, आपने 8 की लिस्ट बनाई है तो शायद 12 कर जाएंगे, 10 कर सकते हैं 20 की लिस्ट बनाई होगी तो शायद 10 भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी टू डू लिस्ट को पेयर डाउन कीजिए, यह एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल का बड़ा कंसेप्ट है। नाउ नेक्स्ट इज टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशंस कभी कभी होती हैं जिनको आपको फ्रंट से रह के लीड करना पड़ता है, बैक साइड से लीड नहीं कर सकते। डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। हमारे शायद स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्लास में एकाध ऐसे स्टूडेंट्स में मिल सकते हैं, उनके लिए ये स्पेशल है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल्स। और कई चीजें जिनको कंट्रोल नहीं भी करना चाहिए। कई बार जैसे कहते हैं हम लोग, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। नाउ ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? डोंट ट्राई टू कंट्रोल दी, हम नहीं, उसका अपना जीवन अपने हिसाब से जिएगा। मैं अपने बच्चे के जीवन में जो वो चाहता है वो सारी सुविधाएं मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते मैं क्लियर रखूंगा, लेकिन करेगा वो जो उसे करना है। लुक फॉर द अपसाइड, जीवन के देखने का नजरिया, इसी के लिए कहते हैं नजर, नजारे बदल जाते हैं कब? जब नजरिया बदल जाता है। कई बार क्या होता है, हमें देखने का नजरिया समस्याओं को चेंज कर देता है। शेयर योर फीलिंग्स ही हमने डिस्कस किया एंड कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर। कठिन परिस्थिति, बहुत अच्छे ऐसे लोग देखे हमारे कॉलेज के अंदर भी, एक हमारे बॉस हैं, सीनियर हैं, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए, कैसे भी चैलेंजेस हैं, वो आप जाके मिलोगे तो दो जोक जरूर सुनाई देंगे आपको और माहौल एकदम से लाइट हो जाता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर की जब बात आती है तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि कभी जोक सामने वाले पर नहीं किया जाए। आप खुद को ऑब्जेक्ट बना के या सब्जेक्ट बना के जोक सुना रहे हैं, अच्छी बात है, किसी पर जोक करना खराब है, बट जोक इज अ गुड क्वालिटी। अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब नाश्ता कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए और क्या क्या कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। रिड्यूस कैफीन एंड शुगर, अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग्स। ये वैसे आज दुनिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है यहां जितने भी लोग बैठे हैं ये बात तो विशेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाले लोग यहां बैठे हैं। बट ये चीज आप देखिए, रिड्यूस कैफीन एंड शुगर। जब हम कैफीन एंड शुगर की बात करते हैं, आप पूरे दिन में मान लीजिए एक आध टी या कॉफी ले रहे हैं, इट्स गुड, एक या मैक्सिमम दो ले रहे हैं तो हेल्दी है। लेकिन यदि आप चेन ड्रिंकर्स हैं, यानी दिन में 8-10 चाय ले रहे हैं या 4 चाय ले रहे हैं, जो भी आ रहा है उसके साथ बैठ करके, बोले चाहे एक इतना सा लेते हैं, 3 सिप या 2 सिप ही ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चलता है, ये चलता नहीं है। एक होता है केएफपी और एक होता है बीएफपी। केएफपी मतलब की फर्क पैदा है और बीएफपी मतलब बहुत फर्क पड़ता है। एक चाय का 4 बार हम छोटे छोटे सिप ले रहे हैं या केवल 1 बार ले रहे हैं, फर्क पड़ता है। तो चाय कॉफी या तो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे माउंट आबू इज अ डिफरेंट केस, से ठंडा इलाका है तो लोग लेते हैं, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में आप ले रहे हैं, 1 या 2 पूरे दिन में, इट्स गुड। बट 4-8 प्लीज अवॉइड कीजिए, वरना ये आगे जाकर के बहुत चीजें पैदा करता है। और शुगर अगेन, यस, शुगर भी एक लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए। नाउ गेट एनफ स्लीप। एनफ मतलब, अब एनफ के आगे मोर देन एनफ मुझे लगाना पड़ेगा। अभी जनरली क्या होता है, हम रात को 10 बजे सोते, कब सोना और कब उठना, ये आध्यात्मिक जीवन शैली का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे याद है हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो एक राइट टाइम होता था, लगभग 9-10 बजे बच्चे सो जाते थे, 10 बजे के आसपास सोते थे और सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे। अब देख रहे हैं हम लोग हॉस्टल में, अपने ही हॉस्टल्स में देखते हैं, हमने पता कि आपने हॉस्टल्स में, आपको जान के आश्चर्य होगा, 60-70% बच्चे सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं। 60-70% स्टूडेंट्स डोंट टेक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हॉस्टल्स के अंदर। क्यों नहीं ले रहे हैं पता किया, तो पता किया कि सारे लोग 2-3 बजे पहले कोई सोता ही नहीं है और सुबह 7 बजे आपने ब्रेकफास्ट का टाइम रखा हुआ है। अब मतलब जो जीवन शैली एक दैवीय जीवन शैली, फरिश्तों जैसी जीवन शैली की हम बात कर रहे हैं, और पता लगा उल्लुओं जैसी जीवन शैली जी रहे हैं। उल्लू ही हो गए ना, रात भर जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। सो डिवाइन लाइफस्टाइल से राहुल स्टाइल लाइफस्टाइल की तरह चले गए। सोने का टाइम 10-11 बजे के आसपास, मैक्सिमम 11 बज गए, और उठने का टाइम आप देखिए, एक दुनिया में अच्छी अच्छी किताबें हैं, कैसे लिखी हैं, 5 AM क्लब आपने कहीं पढ़ा हो, बड़ी अच्छी किताब है, रॉबिन्सन शर्मा ने लिखा है कि दुनिया में किन किन लोगों ने न जाने क्या क्या प्राप्त कर लिया, किससे प्राप्त कर लिया, सुबह 5 बजे उठकर एक पॉइंट पे उन्होंने पूरी बुक लिख डाली, इतने लोगों के एक्सपीरियंस लिख डाले कि सुबह 5 बजे उठने से ये 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 200 पेज की किताब लिख दी। और ब्रह्मा कुमारी इसमें सुबह उठने का टाइम आपको पता है क्या है, यहां के लाइफस्टाइल का पहला पार्ट है 3:30 बजे उठना, 3:30 से 4 है उठने का टाइम, ठीक है 3:30 नहीं उठे, 4:45 उठ के, 4 उठ के, 4 से 4:45 बजे क्या है, मेडिटेशन का टाइम है। हमारे यहां एक मजाक में एक बात कही जाती है, 2 बजे उठने वाला राजयोगी, 3 बजे उठने वाला महायोगी, 4 बजे उठने वाला योगी, 5 बजे उठने वाला भक्त, 6 बजे उठने वाला गृहस्थी, 2-3-4 बच्चे होंगे परेशान किया होगा रात को तो 6 बजे उठेगा, 7 बजे वो उठेगा रोगी, 8 बजे वो उठेगा महारोगी, आगे की यहां तो लाइन ही खत्म होगी, और हमारी इस लाइन खत्म होने के बाद में लोग उठते हैं, मतलब हमारी कैटेगरी सिर्फ 8 बजे तक ही चलती है, 8 बजे के बाद कोई कैटेगरी नहीं है। तो आप देखिए, बनने थे राजयोगी चले थे और कहां रह गए, राजयोगी नहीं, महायोगी नहीं, योगी नहीं, भक्त नहीं, गृहस्थी नहीं, रोगी नहीं, कहां जाके महारोगी और एक्सट्रीम केसेस में पड़े हुए। उठने का टाइम हम ये नहीं कह रहे आपको 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, बट कम से कम हम एक जीवन में ये काम कर लिया, यहां आना मान लीजिए आपका सफल हो गया, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया कि हम 5 बजे तो उठे। स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, डिवाइन लाइफस्टाइल, फरिश्ता जीवन बाद की बात, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी कम से कम इतना जरूरी है कि हम 5 बजे रेगुलर उठने का अभ्यास जीवन में डालें, बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत फायदा होगा। तो गेट एनफ स्लीप का मतलब, नाउ नेक्स्ट इज डेली मेडिटेशन के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें। यहां पे भी आप रह रहे हो तो आपने देखा होगा हर घंटे में एक 60 सेकेंड्स का एक गीत बजता है, 1 घंटे में 1 मिनट, और 1 घंटे में 1 मिनट यदि उसके लिए निकाल लिया तो आपके 59 मिनट की गारंटी है। करते हैं ना अपन इंश्योरेंस, सब लोग साधारण जीवन में जीते हैं तो हम देखते हैं ना क्या करते हैं, बोले आप 5 लाख की गाड़ी लाए हो, 5,000 रुपए आप दे दीजिए तो आपकी गारंटी है साल भर गाड़ी को कुछ होगा तो हम देख लेख करेंगे, ये होता है। तो आप ये मानीजिए कि आपको 59 रुपए बचाने हैं तो 1 रुपए का इंश्योरेंस डाल दीजिए, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। ये 1 रुपए का इंश्योरेंस का मतलब क्या है, वो 1 मिनट उस ईश्वर के नाम कर सकें तो 59 मिनट की हम लोग बचत कर सकते हैं, या 59 मिनट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने आप को तभी फ्री कर पाएंगे चीजों से, कई प्रॉब्लम से हम फ्री होना चाहते हैं, वो फ्री तब कर पाएंगे जब 1 मिनट इन्वेस्ट किया होगा। रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, ये भी एक, जब बातचीत है, नॉर्मल बातचीत चल रही है आपस में मान लीजिए, तो कोई बातचीत मान लो सामने वाले ने कुछ राय दी तो हम लोग क्या करते हैं बातचीत के अंदर, जब कोई राय दी और मान लो वो राय मुझे पसंद नहीं आ रही है या हमारे पास उससे कुछ बेहतर राय है तो क्या कहते हैं, पहला शब्द क्या होता है कोई बताएगा, पहला शब्द क्या होता है, आपने मुझे कोई राय दी और वो राय मुझे पसंद नहीं आई और मेरे पास आपसे बेहतर एक अच्छी राय है जिसे मैं समझता हूं कि बेहतर है, क्या पता उनकी सही है, लेकिन अब मेरा फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होता है जनरली है, रहने दो और बताएं है, अपनी राय अपने पास रखो, और मतलब पहले ज्यादातर 90% ये सर्वे है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको, पहले 2 वर्ड होते नहीं 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 नहीं, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि वजह ऐसा करते नहीं नहीं देखो ऐसा करते हैं, मैं खुद अपनी राय बता रहा हूं तो पहले 2 सेंटेंस में 2 वर्ड क्या जोड़ दिए, नहीं नहीं, और ये नहीं कब बोल जाता है दिमाग में पता ही नहीं लगता, अब वो जो नहीं पहला वर्ड ही हमने सामने वाले ने कुछ बोला और हमने जवाब क्या दिया, नो, और नो बोलते ही सामने जो सुन रहा है उसका दिमाग ब्लॉक, अब वो नहीं सुनेगा आपकी क्योंकि पहले ही आपने नो बोल दिया। सो रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी अबाउट टाइम, टाइम का क्या टाइम बता दीजिएगा मेरे को, 10 मिनट, क्लैरिटी अबाउट पर्पज ऑफ लाइफ एंड बेटर कंसंट्रेशन। एक मेडिटेशन के बहुत सारी चीजें फायदे हैं कि कंसंट्रेट बेटर कर सकते हैं, हमारे जीवन का गोल क्लियर होता है। गोल क्लियर मतलब जैसे यहां ब्रह्मा कुमारी इसकी हम बात करें तो जीवन का गोल क्लियर है कि नर नारायण बन जाए और नारी लक्ष्मी बन जाए, हमारे जीवन जीने का तरीका ऐसा हो कि हमारी एक लाइफस्टाइल फरिश्तों और डिवाइन लाइफस्टाइल बन जाए। तो अपना भी हमारा क्या पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है, जब तक पर्पस ऑफ लाइफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होगा तो विजन सामने नहीं रहेगा, और जब विजन नहीं होगा तो फिर विजुअलाइजेशन चेंज नहीं होगा, विजुअलाइजेशन चेंज नहीं होगा तो डिविनाइजेशन नहीं होगा। ये हमने डिस्कस किया। आप ये देखिए कहां हम चले थे, राजयोगी बनने, राजयोगी से बनते 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 बनते, चलिए आपसे डिस्कस किया। आप ये समय का, समय को एक बात कहा जाता है, क्या शब्द कहा जाता है यहां पर, अमृत वेला। और यदि आप 5 बजे उठा के बाद उठ रहे हैं तो ये मान लीजिए उसमें से ए शब्द को निकाल ही दिए, अमृत वेला में से आप आगे का ए शब्द निकाल दीजिए यदि 5 बजे बाद हम उठ रहे हैं तो क्या हो गया, कौन सा वेला हो गया, मृत वेला। अमृत वेला की जगह क्या रह गया, मृत वेला। अब अमृत वेला हमारा अमृत वेला हो उसके लिए क्या हो, रात को रात का फूड लाइट हो, फिर आपने सुबह चलो जरूरत पड़े तो कुछ आप लगा सकते हैं अलार्म भी, और ऐसा लगे कि सुबह उठते ही पहले पहला काम क्या हो, जिसको चाहते हो दिल से उससे प्यार भरी बातें हो, यानी उस भगवान के साथ 5 मिनट उठते ही पहला काम, जहां बेड में बैठे हुए हैं बेड में बैठते ही प्यार से उसको याद कर। दुनिया वाले भी आप देखो, कोई ट्रक भी चलाता होगा तो ट्रक में जाते ही क्या पहला काम क्या करेगा, वो कहीं लॉन्ग रूट में जाना हो 300 किलोमीटर या जो भी ट्रक चलाने में, तो बहुत सारे ट्रक चलाने गाड़ी चलाने वालों को देखा, ट्रक में बैठते ही चाहे वो 2 बार वो नमस्ते करेगा, कुछ जो भी उसका धर्म होगा उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करेगा। तो हमारे जीवन की गाड़ी भी तो शुरू हो रही है सुबह सुबह, जब जीवन की गाड़ी शुरू हो रही है तो एक बार कम्युनिकेशन हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए, पावर आ जाए, चार्ज फुल हो जाए, गाड़ी शानदार चलेगी। नाउ नेक्स्ट इज स्लीपिंग टाइम को भी एडजस्ट करने की जरूरत है। कई बार ऐसा है कि स्लीपिंग टाइम 12-1-2 की जगह जब हम कोशिश करके उसको 10-11 पे ला सकते हैं तो इट विल बी गुड। हिंदू धर्म में 5 विकार माने जाते हैं, आपको पता है कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। क्रिश्चियनिटी में आप जाओगे तो वहां 6 माने जाते हैं, और वो 6ठा विकार कौन सा है, कोई है क्रिश्चियनिटी से तो बता पाएंगे, कोई 6ठा विकार कौन सा है, ग्लटनी, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग को 6ठा विकार क्रिश्चियनिटी में माना गया है। वास्तव में ये ओवर ईटिंग भी बहुत बड़ा विकार है, एंड लेट नाइट वर्किंग अवॉइड करें 2 बजे की, क्योंकि अपन ये सोचते हैं जो 2 बजे रहते हैं ना तो बेहद शांत, 12-1-2 बजे, लेकिन हकीकत क्या है, 10-11-12 बजे का समय ऐसा समय होता है जब सारी दुनिया काम कर रही होती है, बहुत कुछ दुनिया में चल रहा होता है, तो चारों तरफ जो वाइब्रेशंस होते हैं उतने सतो प्रधान नहीं होते जितने की सुबह 3-4 बजे का साइलेंस का एनवायरनमेंट होगा। आपको नई आइडियाज उसके अंदर आएंगे, जिस काम में एक बार आपकी बॉडी सपोर्ट करने लग जाए ना, कई बार क्या होता है कि शुरू शुरू में तो हम कोशिश करते हैं कि यार एक बार उठ के देखते हैं, चलो 3 बजे 2 बजे 4 बजे, 3-4 छोड़ दीजिए, चलो 5 बजे उठ के देखा हमने, 5 बजे उठ के देखा, 1-2 दिन नींद आई, फिर क्या कहते हैं, अरे छोड़ो क्या फायदा यार, नींद आ जाती है सुबह, छोड़ो। लेकिन बॉडी के क्लॉक को एडजस्ट होने में मैक्सिमम 21 डेज लगता है। बॉडी क्लॉक को एक साइंटिस्ट का सर्वे कहता है कि बॉडी क्लॉक एडजस्टेड इन 21 डेज। किसी रूटीन को हमने 21 दिन लगातार फॉलो कर लिया है तो वो रूटीन फिर इजी हो जाता है। अब 22वें दिन यदि हमें वो काम करना पड़ेगा तो आपको तुरंत लगेगा कि सुबह 5 बजे तो अच्छे से नींद खुल रही है और 10 बजे बाद आपको जागना मुश्किल हो रहा है। राजयोगी जीवन शैली, आध्यात्मिक जीवन शैली या फरिश्तों की जो जीवन शैली है उसमें मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। एक बात अच्छे से नोट करें और इसको बार बार रिवाइज करें, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, या फिर आई एम द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ लव, मैं उस प्यार के सागर की संतान हूं। कौन हूं मैं? आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, और इस दुनिया में उस प्यार के सागर से प्यार लेके प्यार बांटने आई हूं। ऑल आर माई रिलेटिव्स, दो चार घर वाला परिवार नहीं, सारा पृथ्वी मेरा परिवार है। लास्ट इज एक्सरसाइज, 15 to 16 मिनट, मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम 60 मिनट तक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, डेली अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। स्पिरिचुअल स्टडी में एक छोटी सी चीज हम बताएंगे, यहां पर डेली ब्रह्मा कुमारी इसमें एक सुबह सुबह क्लास चलती है, आज की क्लास से ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं जो आज सुबह चला था। इस तरह डेली कोई ना कोई वैल्यूज की बात चलती है। आज की क्लास का पार्ट है सरल चित्त बनो तो सफलता मिलती रहेगी। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सभी का स्नेही होगा, उसको सभी द्वारा सहयोग भी अवश्य प्राप्त होगा, इसलिए वह सभी बातों का सामना सहज कर सकता है। जो जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना माया सामना, माया मतलब चैलेंजेस उसका सामना नहीं करेंगे, वो सभी का प्यारा बन जाएगा। साथ साथ सरल स्वभाव वाले के व्यर्थ संकल्प अधिक नहीं चलते हैं, उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट इज, अभी क्योंकि समय ज्यादा है मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं, बट बेसिक चीजें करीब करीब हमने सारी कवर की है। ओम शांति, थैंक यू।
जोरदार तालियों से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमें स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को कैसे जीना है उसके बारे में बताया। और हमारे बीच में स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी भी प्रेजेंट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें, और साथ में अपनी बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि बैज और बुके के द्वारा वो उनका स्वागत करें। तो अभी हमने स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के बारे में जाना कि हम टीचर्स प्रोफेसर्स एक रोल मॉडल हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारा लाइफस्टाइल जैसा होगा उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। तो अभी हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अभी हम इस बारे में बात करेंगे, और इसके लिए मैं गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर नीनू टेक चंदानी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो आए और इस विषय के बारे में बताएं कि कैसे कॉलेज इंस्टीट्यूट में रहते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें बताएं। तो मैम के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, शी इज अ ज्वाइंट डायरेक्टर एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। NIFT is an educational institute imparting education in design, management and technology. She has done graduation in humanities, post graduation in sociology. She is pursuing MBA in self management and crisis management. Jo Brahma Kumaris ki collaboration hai Annamalai University ke sath, usme ma'am MBA kar rahe hain self management and crisis management mein. She is associated with Brahma Kumaris from last 15 years and I request sister to share valuable experience of spirituality and professional challenges in front of us. Sister Dr. Neenu Tek Chandani.
I would not give that what is this spiritual lifestyle and how it is to be experienced, but I would share my experience that how I entered into this spiritual world or spiritual lifestyle, and which has helped me not only in my personal life but also helped me in my professional life, where we have more than 1500 students, and how to impart this spiritual education to the students so that they should become a very good citizen of the country and they should develop holistically overall personality. In 2001, BK sister Varsha, she was the tutor of my son. One day she met and she asked me, "Would you like to meet God?" I said, "What?" She said, "Yeah, would you like to meet God?" I said, "Do you know him?" She said, "Yeah, I know him. I meet him every day." I said, "Obviously, I would like to meet God." Then she said, "Okay, come tomorrow morning and I will tell you the path how you can meet God." So the entire night, I was curiously awoke and I said, "How is it possible that I do not know and she knows about it?" You know, as a human psyche, we really do not concentrate on the main agenda, but we think about what is the agenda behind the agenda. Somehow the morning happened and I went to her on the designated time and I said, "Varsha ji, bataiye, main God ko kaise mil sakti hoon aur wo kaun hai?" And from there, my journey to this spiritual knowledge happened. And she gave me the knowledge about the self, about the supreme authority, and what is the world drama and how does it happen. And the values, which seven values which every soul has that as its innate powers. So I was really, you know, surprised. And one statement she made, which really turned my life, and I'm carrying that statement with me till today. उन्होंने मेरे से एक चीज कही कि यूनुवेन, आप बहुत लकी हैं, यू आर वेरी स्पेशल. आई सेड, व्हाई? शी सेड, बिकॉज इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में इतने सारे अरबों लोग हैं, उन अरबों लोग में से दिल्ली के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उन लाखों करोड़ों लोग में से भी, वेयर आई वॉज रिजाइडिंग इन कीर्तिनगर, शी सेड कि इस आपकी लोकेलिटी में 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, उस 1 लाख के अंदर से ईश्वर ने आपको चुना है फॉर दिस नॉलेज. उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है. सो यू शुड कंसिडर योर सेल्फ वेरी स्पेशल. उन्होंने किसी और का नहीं, आपका हाथ थामा है. उनकी एक ये स्टेटमेंट कि ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है बिकॉज ही कंसिडर मी एज इज वन ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन, इस एक स्टेटमेंट ने मेरे पूरा दुनिया को, अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बदल दिया. क्योंकि मैं हमेशा इस खुशी में रही कि मैं तो ईश्वर की बहुत स्पेशल संतान हूं और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो अब मेरे को किसी चीज की कोई डर नहीं है, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, और मेरी को दुनिया में कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है. बिकॉज जब मुझे ईश्वर मिल गया तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी. So that one statement I carried in my professional life as well, because I started going to the center, Sirifoth center, and getting my Murli and doing meditation with Baba. And somehow that I believe that knowledge and that union with the supreme authority reflected in my personality, so that my colleagues started coming to me. And they used to share their problems and they expected that I should give them some kind of advice. So I said, "I can't give any advice to you." Yes, had I been in your place, I would deal this situation in this manner. Now it is up to you that how you do it. Because Baba ne hame ye samjhaya ki hum kisi ko advice nahi de sakte. Haan, हम उनको ये बता सकते हैं कि मैं अगर हूं, मेरे पास ऐसी सिचुएशन आए तो मैं उसको कैसे डील करूंगी. बिकॉज अगर हमने अपनी एडवाइस किसी को दे दी और उस एडवाइस के ऊपर एक्शन लेकर द अदर ह्यूमन बीइंग हैज टेकन दैट और डिड दैट एक्ट एंड समहाउ मे बी इंटेंशनली दैट एक्शन ऑफ द अदर बीइंग क्रिएटेड सम काइंड ऑफ हर्ट एंड पेन टू some other soul, then I would be indirectly responsible for creating that pain. So I really do not want to be a part to create a pain or to hurt or sorrow to any other being. So that is why I always, whenever whoever comes to me, I always say, okay, ye situation hai, mera point of view, main hoon to main aisa decision ya aisa action lungi. Now the choice is yours. You choose whether you want to do this way or otherwise also. Now secondly, since there are many students, and as everyone knows that today's students, though they have lots of information, they are epitome of energy, but they do not know how to channelize their energy in the right direction. Reference mein, we have our counselor at the institute, and we have seen that day by day many students are referring to her for her advice because they are feeling distressed, they are feeling under stress, or they become drug addict, or they have the suicidal tendencies because of peer pressure, because of the work not completed in time, or because of abusive relationship or unhealthy relationship, that kind of various reasons. But we saw that increasing the days or the visit of counselor is not the solution. Then we really, you know, put a great thought into it, and how to avoid our students to become in the habit of this distress and stress, how to remove this situation of theirs. Then recently I come across an app, thinkright.me, which is a Brahma Kumari app, where Sister Shivani gives everyday's positive affirmations. So we thought, okay, instead of putting a thought of the day, we have started putting those positive affirmations inside our canteen area and other areas which are very famous among the student fraternity, where they would like to spend most of their time. And we have put those affirmations, everyday's affirmation, and we have recently created a soundproof room, a very small room, and where we have put all such nice quotes there, and we announce that jo bhi students in affirmations ko throughout the day yaad rakhta hai, and at the end of the day they have to come and repeat those affirmations, and if they do it correctly they will be rewarded. So first day there was no student, nobody came to us. We said, okay, never mind, today is the first day, so let's continue it. Second day 3-4 students came, and they were very right. They remembered their affirmation. They said ki madam pura din humne is affirmations ko yaad kara hai. I said, you know what has happened, now you are not going to forget these affirmations because it has recorded in your subconscious mind, and your subconscious mind will start working towards achieving these affirmations. And gradually the students increased, and whenever the students are in distress but they feel little, you know, afraid and hesitant to share their problems with any one of us or with their friends, so that is why we created that soundproof room, and we have told them, okay, if you do not want to share your problems with anybody, so you please go to that room, there is no one, the voice will not come out, and you pour out your heart. आपके मन में जो फीलिंग्स हैं, इफ यू वॉन्ट टू क्राई आउट लाउडली, इफ यू वॉन्ट टू यू नो लाइक अब्यूज एनीबडी, इफ यू वॉन्ट टू से एनीथिंग टू एनीवन, प्लीज वेंट आउट योर फीलिंग्स, एंड वंस यू डू इट आई एम श्योर दैट यू विल फील बेटर. एंड दिस आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी श्योर शॉट वे टू डी स्ट्रेस देम फ्रॉम देयर स्ट्रेस. Because that room has become a hit among our students. And second thing, the affirmations which we used to write every day, that is also a very successful pattern of creating positive thoughts amongst students. And not only students, even the faculty and the staff also. Because faculty is the backbone for the students. They create the professionals, they create them into a beautiful person So therefore, the faculty also takes the benefit of that, those affirmations and that soundproof area. I would like to read one or two affirmations. And secondly, we have gifted this thinkright.me app to all our students from the organization side. And we know that initially they may and may not use it, but gradually this app would definitely become a solution to all their problems, and they know how to deal a difficult situation or how to face the challenges in their life. I'm sorry, the network is not working here. Never mind. But the affirmation like that, I am a peaceful being. I love my body. I love myself. I energize my food daily as the food heals me. These kinds of very small but very strong and energetic affirmations are given on day-to-day basis, and after that affirmation there is a small 3-minute video of Sister Shivani explaining the affirmations. I would not take much of your time, but I would like to end this session with a beautiful quote of Rumi, who is a Sufi saint. It says, I prayed for change, so I changed my mind. I prayed for guidance and learned to trust myself. I prayed for happiness and realized I'm not my ego. I prayed for peace and learned to accept others unconditionally. I prayed for abundance and realized my doubt kept it out. I prayed for wealth and realized it was my health. I prayed for a miracle and realized I am the miracle. I prayed for a soulmate and realized I am the one. I prayed for love and realized it is always knocking, but I have to allow it in. Thank you and Om Shanti.
Thank you so much. Ma'am ka bahut bahut dhanyawad jinhone apne experience ke saath hame bataya ki bachcho ke saath jo challenges aate hain unko wo kaise face karte hain. तो हमारे बीच में स्वामी ओमकारानंदा सरस्वती जी और उनके साथी स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी प्रेजेंट हैं. उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें, और जोरदार तालियों से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. और जैसे कि बहन ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हम जो नॉलेज सुनते हैं, या आप 2 या 3 दिन में जो आप नॉलेज सुनेंगे या सुन रहे हैं, तो उसको हम अपने जीवन में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं. क्योंकि जब तक हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उसका नॉलेज का कोई फायदा नहीं होगा. और मैं बहनों से भी अनुरोध करूंगी कि हमारे गेस्ट का बुके और बैजेस के साथ स्वागत करेंगे. तो मुझे एक कहानी याद आ रही थी जब बहन ने बताया कि ईश्वर को अपने साथ रखती हैं और ये सोचती हैं कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. तो एक बार एक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है और वो भगवान से मांगता है, उनके सामने भगवान आते और पूछते तुम्हें क्या चाहिए. तो उन्होंने कहा कि जब मेरे सुख के दिन हो तब भी आप मेरे साथ रहना, और जब मेरे दुख के दिन हो तब भी आप मेरे साथ रहना. तो कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि जब उसके खुशी के दिन होते हैं तो धरती पर मिट्टी पर 4 पांव के निशान थे. तो वो बहुत खुश होता है कि भगवान मेरे साथ है. लेकिन कुछ समय के बाद जब परिस्थिति आती है तो वो देखता है कि मिट्टी पर सिर्फ 2 ही पांव के निशान है. तो कुछ समय के बाद भगवान उसके सामने फिर आते हैं और उससे नाराज होता है कि आपने तो कहा था चाहे सुख के दिन हो चाहे दुख के दिन हो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप तो दुख के दिनों में मेरे साथ ही नहीं थे. तो भगवान ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे सुख के दिन थे, और तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे दुख के दिन थे. जब तुम्हारे सुख के दिन थे तब मैं तुम्हारे साथ चल रहा था, इसलिए वहां पर 4 पांव के निशान थे. लेकिन जब तुम्हारे दुख के दिन थे तब मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था, इसलिए वो तुम्हारे पांव के निशान नहीं है, वो मेरे पांव के निशान है। तो इसी प्रकार परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो किसी ना किसी के थ्रू हमारी मदद जरूर करता है, बस हमें पहचानने की देर होती है। तो परिस्थिति में जैसे पिता माँ बाप कभी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही वो हमारा पिता है, वो हमें मुसीबत में कैसे अकेला छोड़ सकता है। तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है, बस उसको फील करना है। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे बीच में हमारे चेयरपर्सन प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी प्रेजेंट हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो आज के विषय में अपने कुछ व्यूज हमारे बीच में रखें। ही इज अ वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। ही हैज डन एमए इन संस्कृत। ही टोट स्टूडेंट अबाउट वेदास इन संस्कृत इन गुरुकुल फॉर 5 years। ही हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस टीचिंग इन मैसूर कॉलेज ट्रेडिशनल शास्त्रास फॉर 5 years। He has transferred to administration of Sansthan and hold many key posts in higher education institutions. I request Brother P.N. Shastri ji to share few words of wisdom on this topic. Brother Professor Dr. P.N. Shastri ji.
Om Shanti. Swasti Pantham Anusarema. We will follow righteous path. Hum sabhi kalyan marg ka anusaran kare. मैं एक घटना से शुरू करता हूं। राजा मंत्री थे, किसी कारण से राजा का एक अंगुली काट गया था और अगले दिन मृगया अरण्य में चलते हैं राजा मंत्री। उस समय पर किसी कारण से राजा के साथियों इनके साथियों अलग हो जाते हैं। फिर उस अरण्य में उस राजा को लेकर के कुछ लोग उनको पकड़ करके जाते हैं। अरण्य में एक देवी का मंदिर है, देवी के सामने चल करके उसको बलि देने के लिए उनको रख देते हैं। उस समय पर वो देवी के जो अर्चक है उसको काटने वाला पूछता है, हां किससे लाए हैं? अच्छा लाए हैं सदृढ़ राजा को, किंतु एक बार देख लेना है उसके अंग में कोई विकलता है। देखने के बाद मालूम हुआ उसका अंगुली काटा था, इसे मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दिए। बाद में जब आया मंत्री के पास, कहा कारण, मंत्री जब इसका अंगुली काट गया था तो कहा था ये अच्छा हुआ, कारण अभी मुकेश जी ने कहे थे गुड बेटर बेस्ट, अच्छा हुआ आगे अच्छा होगा। कभी कभी ऐसे आपत्त भी अच्छा हो सकता है। और एक घटना देखिए, रामायण में हनुमान सीतान्वेषण के लिए चलता है, जब उत्तर के दिशा में चलते हैं तभी सभी वानर लोग समुद्र कैसे पार करना है, सभी लोग विचार करते रहते हैं। उसमें अति वृद्ध लोग जांबवान थे, वो कहते हैं आपका शक्ति आपको मालूम नहीं है, हनुमान आप 2-3-7 समुद्र भी पार कर सकते हो। उनको पंप लगाते हैं, तभी उनको मन में आता है मैं ये समुद्र को पार कर सकता हूं। ये एक है। अब एक संदर्भ में कहना चाहता हूं, जैसे मुकेश जी ने 20 से ज्यादा अंश पॉइंट्स को दिए हैं, ऐसे हमें जब बाल्य में जब उठते उठते आज भी कहते हैं, कुछ लोग पालन करते हैं, हमें क्या स्मरण करना है? सामान्य से हम पृथ्वी को नमन करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्य नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। ऐसे सोते समय पर कभी कभी रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम शयने स्मरे नित्यम दुस्वप्न तस्य नश्यति। उस समय पर ऐसा हव्यास हैबिट को कल्टीवेट करने के लिए हमें अभ्यास करते थे। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, जो पॉजिटिव थिंकिंग, हनुमान को उधर जाने के लिए मेरे पास ये शक्ति है, ऐसा जब चिंतन करने के लिए प्रेरण हुआ, ऐसे पहले भी जो उदाहरण हुआ और आचरण में वो कह दिए हैं लिविंग स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल। ये लाइफ स्टाइल में सामान्य से हम उसमें दूर आ गए हैं, कारण आजकल का केवल विद्यालय यूनिवर्सिटी महाविद्यालय इसको हम कंपेयर करते हैं, किंतु एक काल में भारत में गुरुकुला सिस्टम, गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होता था, साधारण से प्रौढ़ 18 एज तक, उसके बाद तो भिन्न भिन्न रूप से भी होता था, किंतु गुरुकुल में उनको क्या सिखाया जाता था, सामान्य से जैसे कहते हैं कब उठना है, 4-5 बजे ब्राह्मी मुहूर्त में उठ करके उसका जो करना है, बाद में क्या क्या अंश पढ़ाना है, और जीवन में यह नहीं है केवल गुरुकुल का वही अंश प्राचीन अंश को ही पढ़ाने का नहीं है, विज्ञान को भी पढ़ाते थे, आज भी हो सकता है उसको जोड़ करके उस सिस्टम में हम चल सकते हैं। कारण अभी अभी वाइस चांसलर का एक मीटिंग में चर्चा हो रही थी, हमें आज यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन शुरू कर देंगे है तो धार्मिक एजुकेशन का करके हमको ऊपर ये कम्युनल आक्षेप आ जाएगा क्या करना है, उत्तर नहीं होता है। किंतु जो प्राचीन गुरुकुल का जैसे पद्धति था, उस पद्धति में विज्ञान विषयों को भी जोड़ करके हम ला सकते हैं, तो आज ये स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन शैली से हम बहुत सुधार कर सकते हैं। मुझे इतना अंश कहे हैं और स्वामी जी का भी आशीर्वाद हमको सुनना है, एक अंश ही है, कारण भगवद गीता में हम जब मूल्यों को, उसमें एक संपूर्ण अध्याय है दैवासुरी गुण विभाग योग, दैव गुण कैसे हैं, आसुरी गुण केवल दैवी गुणों को देखेंगे, उसमें 26 गुणों का उदाहरण देते हैं, सामान्य से अभयम सत्व संशुद्धि ही शुरू करके श्लोक से ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग दानम दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम, ऐसे सभी गुणों का, दैवी गुणों का उसमें उल्लेख है। कारण क्या है, हम बाल्य में केवल शिक्षक अथवा विद्यालयों में ही ये जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रयत्न हो, ये नहीं है, पहले से ही हमारा कुटुंब से ही आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का प्रयत्न होता था। जब नींद नहीं आती है तो बच्चे को कहते थे स्टोरी, रामायण का कथा कहेंगे, सत्य हरिश्चंद्र का कथा बताएंगे, कोई शिवी चक्रवर्ती का कथा बताएंगे, दानवीर कर्ण का कथा बताएंगे, नहीं है तो ऐसे जो त्याग के लिए, जो दान के लिए, जो सत्य के लिए, अभय के लिए धैर्य, ऐसे गुणों को निर्माण करने के लिए कथा बताना, अवसर देना ये होता था। और कितना अवसर हमें पॉजिटिव सकारात्मक रूप से आते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन शैली को हम अपनाने के लिए हमारा बच्चे अथवा सभी व्यक्ति कोशिश करेंगे। एक है जैसे परमात्मा से जोड़ने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, वही भगवद गीता में कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः, सभी चीजें हमको ही देखना है, कारण ये शरीर का जो इंद्रिय है, इंद्रियाणि पराण्याहु, ये सर्वश्रेष्ठ है, संशय ही नहीं है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ये हमको काम करने के लिए अथवा जीवन में कुछ करने के लिए दिए गए हैं, किंतु वो श्रेष्ठ है, उसका कैसे उपयोग करना है एक अंश है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, किंतु कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय से, ज्ञानेन्द्रियों से भी एक मन अंतरिंद्रिय वो उससे भी प्रधान है, यही अंश जैसे अनेक विशेषता ब्रह्मकुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन का निग्रहण कैसे हो, मन का निग्रहण से परमात्मा तक, परमात्मा परमात्मा तक पहुंचने का तरीका क्या हो। आज सुबह भी हम सुने हैं ये सब कुछ केवल वैयक्तिक प्रयत्न से, वैयक्तिक संकल्प से ही होता है। उसके लिए हमें प्रयत्न और चिंतन करना होगा। मैं विशेषतः इधर मुझे अवकाश देने के लिए धन्यवाद देता हूं। और जो ऐसे मूल्याधारित शिक्षा हो अथवा मूल्य परक नैतिक चिंतन से किधर भी प्रयत्न चल रहा है संस्थाओं में, उसमें मूल संस्कृत से, संस्कृत संबद्ध अंश से वेद हो, पुराण हो, काव्य हो अथवा शास्त्र हो, उनसे जुड़ने के एक अंश हम कोशिश करते हैं। कारण बहुत समय पर मैंने जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, ऐसे अम्मा जो केरल का जो उसमें है उसमें जुड़ा हूं, और बाकी जो पतंजलि योग विद्यापीठ से उसमें भी जुड़ा हूं। सभी जगह पर जो अंश होते हैं माता अमृतानंदमयी ऐसे, उसमें संस्कृत का झलक कम हो रहा है, मूल से कुछ दूर होते हैं। मूल से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ऐसे संस्कृत संवर्धन परिषद, संस्कृत भारती और अनेक संस्थाएं ने संस्था उसमें प्रयत्न करते हैं। हमारा यही प्रार्थना है। और विशेषतः जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के बहन हैं, जो दीदी लोग हैं, उनके लिए हम उनका जीवन सरणी, जीवन शैली सभी दृष्टि से बहुत प्रशंसनीय है। मुझे स्मरण आता है एक बार कि मेरे लिए अभी दो मिनट होगा, हाँ, कारण प्रशंसा नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने एक बार ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, देवी के प्रार्थना करते हुए कहते हैं, चिता भस्मालेप गरलमशनम दिक्पटधर जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेश भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। जो परमपिता, जो परमात्मा का दर्शन करवाने के लिए अथवा उसका अंश बोधने के लिए जो बहने इस संस्था में जो करते हैं, उनके प्रभाव से ही परमात्मा को भी एक शक्ति आ गया। कारण परमात्मा करने से जीवात्मा हो, परमात्मा हो, इसमें मैंने समझता हूं। जैसे शंकराचार्य जी ने उसमें कहते हैं, ईश्वर को कुछ नहीं है, वो कोई भस्म लेप करता है उसमें, उसके पास क्या है, और वो आभरण सर्प को आभरण करता है, जितावस्मा गरलमशनम खाने के लिए उसके पास विष है, विष खाया है ना। ऐसे ईश्वर को भी सर्वज्ञ कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। इसका कारण है केवल उसके साथ जो अर्धनारीश्वर के साथ स्त्री शक्ति भी है, शक्ति का प्रभाव है। वो ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो बहनों के वो त्याग शक्ति से बहुत कार्य होता है उनको, और मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं भगवान परमात्मा का स्मरण करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से भाई साहब का धन्यवाद। क्योंकि जब भी हम इनसे ऑफिस में मिलने गए हैं, हमें बहुत ही प्यार से मिलते हैं और ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई वाइस चांसलर से मिल रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम एक अपने ही भाई से मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। तो अभी हम बुलाना चाहेंगे स्वामी ओमकारानंद स्वामी जी से कि वो आज के इस सेशन में अपने आशीर्वचन दें। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, ही इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रूथ कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन वैदिक विजन एंड सत्य आर्य प्रकाश। ही इज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ऑन वैदिक विजन। ही हैज डन मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड एन इमिनेंट आर्य सन्यासी जी। आई रिक्वेस्ट स्वामी जी टू गिव ब्लेसिंग्स ऑन दिस डिवाइन ओकेजन। और अभी हमारी चर्चा हो रही थी तो इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा कुमारीज का 7 डेज कोर्स होता है, 1991 में इन्होंने किया है, तो ब्रह्मा कुमारी से बहुत अच्छे से परिचित हैं, तो मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वो आज इस ओकेजन पर अपने आशीर्वचन हमें दे। ओमकारानंद स्वामी जी।
ओम शांति। ये हमें ग्रेस टाइम मिला, कभी कभी ग्रेस सन्यासी को भी मिलता है। सो ऑल ग्रेस ऑफ शिव बाबा एंड ब्रह्मा बाबा। थ्रू डॉक्टर मृत्युंजय भाई, उनसे मेरा मिलना हुआ निर्वेर भाई के पर्सनल मीटिंग में। तो मैंने कहा आपका मैंने सुना है कुछ आप वहां हो रहा है, अजीत स्वामी जी प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम आए, हम चाहेंगे कि हमारे दो तीन मिनट हमारे छोटे बाबा सन्यासी, यंग सन्यासी विवेकानंद हैं, भोजन पहले छोटे को दे करके बड़ा खाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये यंग है बिल्कुल 24-25 एंड बंगाल प्रांत का है, बंगाली बाबा अच्छे। सो थोड़ा सा दो तीन मिनट में अपना कुछ बताएगा आपको।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू स्वामी जी महाराज। नमस्ते। नमस्ते मीन्स द डिवाइन इन मी ऑनर्स द डिवाइन इन यू। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर टू बी हियर। आई वुड लाइक टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट फिल्स माय हार्ट विद जॉय बिकम अनस्पीकेबल टू राइज इन रेस्पॉन्स टू वार्म एंड कॉर्डियल वेलकम व्हिच यू हैव गिवन अस। आई थैंक यू आदरणीय प्रोफेसर शास्त्री जी, प्रोफेसर मुकेश जी, बीके कोऑर्डिनेटर नेहा जी एंड पूज्य स्वामी एचएच स्वामी ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज एंड रेवरेंड ब्रदर मृत्युंजय भाई। सो यू नो सम ऑफ अस थिंक एंड मेनी ऑफ अस थिंक वी थिंक एंड मोस्ट ऑफ अस नेवर थिंक ऑफ थिंकिंग एंड व्हेन यू थिंक देन व्हाट हैपन, then your frustration will become a fascination, then your dream will become a destination, then your worry will become a wisdom. You know, nowadays religion has become vague confusion. According to Pujya Swamiji Maharaj, ki removing confusion nowadays is a big task. That big task is being fulfilled by great teacher of Brahma Kumaris with the divine blessing of Brahma Baba and Shiv Baba and rest of all Reverend Dadi and his all team. So ye aaj ki is shiksha yani jo Swami Vivekanand bhi kehte hai ki education is the manifestation or the perfection already in man. And religion is the manifestation of the divinity already in man. तो जहाँ अध्यात्म या जहाँ मूल्य वैल्यू होता है, सबसे बड़ी बात ये दोनों जहाँ मिश्रित होता है, मिक्स्ड होता है, तो स्वाभाविक है जो हमारी ह्यूमन सेंसिटिविटी, ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन कॉन्सियसनेस, मानवीय संवेदना, मानवीय चेतना और मानवीय मूल्य फिर हमारे सामने आती है, और फिर हम जो स्पिरिचुअल जो लाइफस्टाइल है यानी स्पिरिचुअल लाइफ यानी स्पिरिट ऑफ विथ गॉड, स्पिरिट विथ योरसेल्फ, तो स्पिरिट से फिर आप अपने जो जीवन को, अपने राष्ट्र को, अपनी समाज को और जो जीवन की जो सत्यता है, कि धर्म की जो सत्यता है, जो आध्यात्मिक सत्यता है, वह भी उस सत्य को आप समझ सकते हैं। तो मैं पुनः आप सबको इस शिक्षा के क्षेत्र में जो चल रहा है प्रोग्राम, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पूज्य स्वामी जी महाराज।
थैंक यू विवेकानंद, बहुत अच्छा स्पीच। बी एंड मेक, बनो और बनाओ, ये चीज होने चाहिए सन्यासी के अंदर। सन्यासी का मतलब इट इज नॉट ए मियर ड्रेस, सन्यासी का मतलब है लव फॉर नॉलेज एंड अल्टीमेटली थ्रू नॉलेज यू हैव टू रियलाइज द ट्रूथ। ये ड्रेस कोड है, जैसे आर्मी को ड्रेस होता है, बहनों को देखो वाइट ड्रेस है, शांति का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, ये ड्रेस है, इसमें मत फंसना, क्योंकि ये ट्रेडिशनल स्टाइल से चल रहा है। हमारे जैन मुनि लोग भी ड्रेस पहनते हैं वाइट ड्रेस, सो व्हाट। सो कितनी शांति है वो तो वो खुद जानेंगे, या उनके पास कितना फ्रीडम है। मैं उनके बीच रहा हूं. मैंने मास्टर ऑफ योगा एंड प्रेक्षा मेडिटेशन जो किया है लिविंग विथ जैन मुनि फ्रॉम जैन विश्व भारती राजस्थान लाडनो. उनका हम पर कृपा आचार्य महापर्ग जी का जिनके कारण मैं कर पाया एंड आई एम प्रोडक्ट ऑफ बीएड फोर इयर्स कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर फोर इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स इंग्लिश ऑनर्स. सो ये बहुत बड़ा कृपा मुझ पे हमारे माता पिता का भगवान का आर्य समाज का बैकग्राउंड मेरा रहा है. लेकिन इस बैकग्राउंड में आने के बाद जो सत्य के प्रति हमारी संवेदना जगी वो एक बहुत बड़ा ग्रेस भगवान का शिव बाबा का वो मुझे आया. और मैं जब पहली बार मुझे ये दर्शन प्रजापति ईश्वर विश्वविद्यालय का दर्शन जो मुझे हुआ वो हुआ मुजफ्फरपुर में 81 के आसपास जब वहां दादी संदेशी शायद थी. मैं जानता भी नहीं था. मुझे बाद में पता चला रानी दीदी ने मुजफ्फरपुर में जब वो मैं भी मिला दो एक साल पहले बोली दादी संदेशी भी यहां विराजी थी राइट. उसके बाद 91 में जब मैं वहां पे रीजनल कॉलेज में एडमिशन लिया फोर इयर्स कोर्स में तो मैं दो तीन महीने के बाद ही क्योंकि मैं आध्यात्मिक था भी पहले से भी तो घूमने चला गया. देखता हूं प्रजापिता ईश्वरी बाबा वे मठ में हमने कह रहे यहां चलना चाहिए. मैं वहां गया और वही मैंने राजयोग का ध्यान किया. मेरे आंखों से आंसू झरे और उसके बाद लगा मुझे कुछ कोर्स करना चाहिए. फिर दादी संदेशी जी ने मुझे हेल्प किया कोर्स के लिए दो दिन. उनके पांव में फ्रैक्चर आ गया था वो सीढ़ी से गिर गई थी. सबको मालूम होगा यहां के भाई बहनों को. सो उन्होंने कहा देखो ये रवि शास्त्री आया है जरा इनको इनका क्लास ले लेना. कोई बहन थी. सो मैं वहीं से फिर 7 डेज 2+5 7 डेज कोर्स करके फिर मैं मुरली क्लास में जाने लगा और सेवा भी देने लग गया. तो वो संस्कार जो मुझे मिले अपने माता पिता से और राजयोग के द्वारा जो मैंने अभ्यास किया वैराग्य का जन्म हुआ. और उसके बाद 95 के बाद मैं सीधा ऋषिकेश ही पहुंचा. यानी मेरा टिकट जो था भुवनेश्वर से ऋषिकेश था. मैं किसी घर द्वार में नहीं गया. माताजी से बात कर लिया फोन पे कि मैं ऋषिकेश जा रहा हूं देखने के लिए बाबा लोग कैसे रहते हैं. उसके बाद मुझे पता चला कि भाई साधु बनने के पहले अनुमति लेनी पड़ती परमिशन लेना पड़ता मां से. मैं कहा ये भी कर लेता हूं. मैं चला लेकिन हमारे माता पिता चूंकि आध्यात्मिक थे आर्य समाजी थे उनको थोड़ा दर्द तो हुआ. लेकिन कहा कोई बात नहीं बेटा अगर तुमने फाइनली इसको डिसीजन ले ही लिया है तो ओके ऑल द बेस्ट. परंतु उस समय कौन चंद्रा स्वामी का चल रहा था स्कैंडल चंद्रा स्वामी का. बोले देखो बेटा अच्छा स्वामी बनना अच्छा साधु बनना इधर उधर वाला मत बनना. तो ये जो कृपा मुझे मिली मां बाप का परमिशन मिला उससे मैं समझो आज जो भी मैं यहां हूं और उसी की कृपा है. तो मैं दो तीन बार आ चुका हूं 3-4 बार ये मेरा शायद यहां पे आना थर्ड टाइम है. एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके टॉपिक पे आ रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल फॉर फेसिंग चैलेंजेस. देखिए एक बात है मैं साधु का जीवन है मैं अनमैरिड लाइफ जी रहा हूं. बहुत सारी भाई बहन यहां पे उस तरह का लाइफ जी रहे हैं लेकिन बहुत सारे उनके साथ जी रहे हैं यानी अपने वाइफ के साथ जी रहे हैं. एक बात मैं अभी अभी मेरे समझ में आया कि जो फेसिंग चैलेंज है आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है फेसिंग चैलेंज इन लाइफ लिविंग विथ ए वाइफ. आप समझो बात को ठीक से. मेरे पास वाइफ नहीं है मगर बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड डायवोर्सी मेरे पास आते हैं. स्वामी जी बताइए रास्ता क्या है. हमारे व्हाट्सएप पर काफी है पूरे विदेश के लोग सब ऐसे. हमने कहा तो अच्छा हुआ कि मैंने राइट डिसीजन लिया कि लाइफ में वाइफ को स्थान नहीं दिया. राइट आई एम थैंकफुल बहुत बड़ा ग्रेस मुझे मिला भगवान का. इसका मतलब यह नहीं कि फैमिली लाइफ में नहीं आना चाहिए. आना चाहिए मगर सोच समझ के आना चाहिए. ऐसे नहीं आना चाहिए ऐसे जस्ट जहां तहां कर लिया ऐसा नहीं करना चाहिए राइट. सो इज ए बिग चैलेंज. अब मैं आपके सामने कुछ बातों को मैं यहां रखूंगा. ये जो चैलेंज को फेस करने के लिए जो आपके सामने एक चुनौती है इस चुनौती को फेस करने के लिए आज का जो सबसे बड़ा मेडिसिन है उसका नाम है राजयोग. ये मत सोचना कि मैं इनको प्रेज कर रहा हूं. राजयोग आज नहीं पहले से भी है. पहले से भी लोगों को सिखाया
जा रहा है, लेकिन जब उसमें कहीं त्रुटियां हो जाती है, बात समझो, त्रुटियां, जैसे 16 तारीख का मुरली है इसमें, 16-5 पूरा प्रूव्ड है, जब गुरु लोग बदनाम होने लगे तो 16 तारीख के मुरली में, मैं इस पर बोल भी चुका हूं रत्नमोहिनी दादी के साथ वहां पे दैट कॉन्फ्रेंस हॉल में शांति वन में, कि जब गुरु लोग बदनाम होने लगे तो सदगुरु आया। और एक बात सुन लीजिए, सदगुरु एकमात्र परमात्मा ही होता है, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई सदगुरु नहीं होता है। आज जो तथाकथित सदगुरु बने बैठे हैं, यही तो रोना है। आज मुझे बड़ा मेरे अहंकार को पोषण मिला या क्या मिला, या मैं अब तक नहीं समझा था उस बात को। सीलू दीदी क्लास ले रही थी मॉर्निंग में, यहां अब मैं सुन रहा था दीदी क्या बोलती हैं, बहुत अच्छी बोलती हैं, मतलब काफी अच्छा, उनका मेरा सम्मान है, मैं उनसे मिलूंगा अभी। मैंने उनको बोला कि बहुत लर्नेड दीदी है ये, आप उनसे मिलना, कुछ प्रेरणा मिलेगी, राइट। उनको बोला मैं भी मिल लूंगा साथ में। सो उन्होंने कहा कि सदगुरु तो दूर, गुरु भी हम ब्रह्मा बाबा को उस तरह का नहीं मानते, क्योंकि वह निमित्त मात्र है, बात को समझना। और जब मैं देखा कि ब्रह्मा बाबा के ऊपर में वो जिस स्क्रीन लाया गया, आप किसी मंदिर में चले जाओ, भगवान के सामने कोई स्क्रीन नहीं होता है, इसका मतलब ये प्रूव करता है कि ब्रह्मा बाबा जो आपके दादा लेखराज ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एकमात्र, कि भाई देखो तुम लोग अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, अदरवाइज लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर इतनी सुविधा नहीं दी जाए तो लोग कहेंगे चलो हम नहीं आएंगे। तो ये जो ये मेरी मजबूरी है, स्वामी जी आज थोड़ा ठीक से आना, आपको कैमरा फेस करना है। जब मैं यहां पे गॉडली स्टूडियो में 2017 में मेरी शूटिंग हो रही थी कुछ इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे पाउडर लगा दिया बहुत इधर उधर। हमने कहा क्या कर रहे हो, बोले स्वामी जी आप कैमरा फेस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा टिप टॉप होना पड़ेगा। हम दोनों थे, उसको भी लगा दिया। हमने कहा वाह जी वाह, अब समझ में आया मेरे को कि आज का आधुनिक बाबा हूं हम लोग, मॉडर्न बाबा उस लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड दिस मोबाइल फोन। तो जमाने के साथ साथ हमको बदलना होगा। इसीलिए एक बात है, चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपनी आत्म शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ फिजिकल बल पे, जो शारीरिक बल है उसके लिए जिम जाते हैं, योगा करते हैं, बहुत खाते पीते हैं, मोटा हो जाते हैं, लेकिन उससे मेरा काम चलने का नहीं है। काम अगर हमारा चलने का है तो आत्मिक शक्ति, और जो आत्मा की शक्ति है वो जगाने से ही आपको सारा सिस्टम समझ में आएगा। इसलिए मैंने एक कोट किया है, एक कविता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हो या जैन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध हो या जैन, अपनी प्रज्ञा को जगाए बगैर हम सब रहते बेचैन। जब तक हमारी प्रज्ञा नहीं जगेगी, हम दूसरों के साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज क्यों बना, यहां पे किसी का नृत्य क्यों हुआ, राइट। देयर शुड बी इंटेलिजेंस इन यू, और आत्मशक्ति, राजयोग, और जो प्रॉपर इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं कहूंगा प्रॉपर वर्ड लगाना पड़ेगा, जब गुरु बदनाम हुआ तो सदगुरु लगाना पड़ा, नहीं तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अरे संस्कृत पढ़ोगे, हमारे विद्वान बैठे हैं, हमारे शास्त्री जी, गुरु का मतलब परमात्मा भी होता है, राइट। जब गुरु बदनाम हुआ तो लोगों ने सदगुरु लगाया। आप देखो संस्कृत की डिक्शनरी खोलो, गुरु मत, परमात्मा को भी गुरु कहा गया, उसी परमात्मा को शिव कहा गया, उसी परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु गणेश सब कुछ कहा गया। नाम उसके गुणवाचक होते हैं, गुणों के आधार पे उस परमात्मा के अनंत नाम हो सकते हैं, अनंत नाम, राइट। अनंत शक्ति वाले परमात्मा का अनंत नाम हो सकता है। लेकिन मैं कोट करूंगा एक अभी गुरुवाणी से, गुरुवाणी मतलब कौन सी वाणी, ग्रंथ साहब, जो गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि उसको गमार कहा जो उस परमात्मा को याद नहीं करता, जो शिव बाबा, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द परमात्मा एंड शिव बाबा, दोनों एक ही है। आद अंत जो राखन हार, तिस प्रीत ना करे गमार, आद अंत जो राखन हार, समझ जाओ ब्रह्मा बाबा भी कहां से आए, सिंध प्रांत से हैदराबाद, और नानक साहब कहां से आए, सारा का सारा ग्रुप उधर से तो है। यहां पर एक धीमान साहब हमको मिल गए, धीमान साहब बोले आप लगते हैं ओरिजिनेटेड उधर से ही होंगे, सिंध प्रांत जो अब आपका पाकिस्तान बन गया। बोले जी स्वामी जी। हमने कहा तभी तो आप अच्छा से बात कर रहे हैं। यह सारा चैप्टर है, सिंधी लोगों ने जितनी सेवा साधुओं की है उतनी सेवा आज शायद पंजाबी और सिंधी सेवा के मामले में साधुओं का सबसे नंबर वन है। गुजरात भी आता है, राजस्थान भी आता है, लेकिन अभी भी आओ महाराज साधुओं ने कुछ उनको दर्द भी दिया, उस दर्द को पी करके भी कहेंगे महाराज जी उधर सो जाइए, आप खाना वहीं पहुंच जाएगा, डर लगता है पता नहीं कल को अभी रात में क्या होगा। सो बोलते उधर महाराज जी रह जाइए, उधर एक भोजन पहुंच जाएगा आपको, राइट। एंड उधर बंद कर लेते हैं उधर बाबा, अच्छा स्वामी जी कब जाएंगे, सुबह, ठीक है चले जाइए, राइट। मगर आपको आवास और भोजन देंगे, उसी वहीं से तो आए हैं सब दादा लेखराज, राइट। अभी मैं इस बात को मैं कहता हूं, देखो ये जो साधुओं का सम्मान मिल रहा है ये मत समझना ये दादा लेखराज जी की टीचिंग है बाबा, और इसी आधार पर ये सारे भाई बहन हमारे ब्रह्मचारी स्वामी जी नमस्ते, स्वामी जी ओम शांति, आइए बहुत दबा हुआ रहता है। हमारे निर्वैर भाई शांत रतन मोहनी दादी हमसे कभी भी नहीं फिलॉसफी की बात करते, कभी भी ना, आई टेल यू, मुझे मिठाई खिलाते हैं। दादा जब ये स्वामी रामदेव आए थे तो दादी जानकी ने उनको मुंह में मिठाई खिला, अब प्यार तो होता ही ना, दादी जरा खिला दीजिएगा प्यार, वो याद, वो सारा फोटो पूरे वर्ल्ड में चला जाएगा। वाह जी वाह, दादी जानकी जिनको आशीर्वाद देके मिठाई खिला दे उनका जीवन तो बदल ही जाएगा, राइट। आज देखो बाबा रामदेव कहां से कहां पहुंच गए। ये भी हमारा निर्वैर भाई से पेड़ा खा लिया, हम भी खा लिए, हमने कहा खिलाओ। ये जो दिल की जो चित्त का जो शुद्धता है, प्योरिटी है, वो मैं अभी दीदी से बात भी कर रहा था कि दीदी जो चित्त की शुद्धता है वो बहुत जरूरी है। जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, कपड़े में दाग नहीं लगे इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर चित्त में दाग नहीं लगे तब फर्क पड़ता है। इसलिए चित्त की शुद्धता से ही परमात्मा मिलेगा। इसीलिए एक बात मैं कहता हूं, कोई साकार ईश्वर मानता है, कोई निराकार मानता है, दुनिया में साकार मानने वाले बहुत हैं। यहां भी अर्बुदा देवी का मंदिर है, जाके देख लेना, गुफा में है। यहां पे कौन कौन सा बड़ा बड़ा बहुत अच्छा गुरु शिखर है, जाइए आप, सब जगह मूर्ति पूजा है। लेकिन एक बात सोच लो, ईश्वर साकार है या निराकार बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मन के हटते नहीं विकार, और विकारों को हटाने का काम हमारे राजयोग के द्वारा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो हो रहा है। इन्होंने इसका नाम मंदिर नहीं रखा, क्योंकि मंदिर कंफ्यूज है आजकल, मंदिर मतलब खाली पत्थर का मंदिर। अरे बाबा, हमारा तो हृदय से बड़ा मंदिर कोई दुनिया में है ही नहीं, हमने उस हृदय में परमात्मा को नहीं बिठाया। कल अभी दीदी बोल रहे, जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो जाए तो उसके अंदर तो सारे परिवर्तन अपने आप हो जाएंगे। इसीलिए आज आवश्यक है इंटेलिजेंस को जगाने की। मेरे पास एक पुस्तक है, एजुकेटिंग द एजुकेटर, रिटन बाय स्पोकन बाय जय कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा है कि भगवान अगर मिल जाए तो मिल लेना, पहले कम से कम अपने आप को तो अच्छे बनाओ। मैं कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता हूं, सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि आचार परमो धर्म, हालांकि मनुस्मृति का वाक्य है, ऋषि दयानंद ने कोट किया है, आचार परमो धर्म, आचरण ही हमारा धर्म है। और न्यूटन, आपको जरा बात को समझना ठीक से, मैंने सोचा जब मैं साइंस में बात कर रहा हूं तो मुझे बात करना चाहिए कुछ ऐसे चीज पे जहां पर कि जो साइंस का मास्टर हो। हम ऑफकोर्स साइंस के मास्टर नहीं है। न्यूटन ने कहा डोंट डाउट ऑन क्रिएटर, इस वॉज टोल्ड बाय सर आइजक न्यूटन, डोंट डाउट ऑन क्रिएटर, इट इज नॉट माई वर्ड, इट इज वर्ड टोल्ड बाय सर आइजक न्यूटन, राइट। उतना बड़ा महान साइंटिस्ट ये कहता है कि क्रिएटर पर कभी डाउट मत करना, क्योंकि हम सब उन्हीं के संतान हैं। वेद कहता है अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं, अमृत जो मरता नहीं है, अमर है, और अमर कौन है, पूरा लैंग्वेज को लिंक करो। इसीलिए इंटेलिजेंस चाहिए। लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा पहनने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, ज्ञान को पाने से ज्ञानी बनता है। ज्ञानान मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। दादाजी दादी जी कहते भी बार बार इस मासूरी मुरली में आता है कि लोग भक्ति करते करते सब अंधविश्वासी हो गए, अंधभक्ति करने लगे। हमारे आर्य समाजी लोग कर्मकांडी बन गए। ज्ञान कांड का चैप्टर खत्म है। जब मैं देखता हूं बहनों को उनके द्वार पे जाते ही, आइए स्वामी जी, ओम शांति, पहले पानी। स्वामी जी कुछ लेंगे आप? भोजन लेंगे? खाए? क्या चाहिए आपको? उसके बाद बोलते हैं आइए बाबा का मंदिर। अरे ये पहले अपने व्यवहार को दिखाओ, पहले अपने त्याग को दिखाओ। त्यागे नय के अमृतत्व मानुषु, त्याग के आधार पर ही हम उस अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें त्याग करना होगा। अगर इस भाग्य को जगाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो आप त्याग करना सीखो। त्याग फॉर द गुड कॉज, सही दिशा में जाने के लिए आप त्याग करो। और एक बात है मैं कहना चाहता हूं, एक चीज इन्होंने आइंस्टाइन ने बोला है। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। सुन लो बात को, व्हेन द आंसर इज सिंपल गॉड इज स्पीकिंग। बहुत अच्छा लगा मुझे, व्हेन द आंसर इज सिंपल, सिंपल मतलब आसान, गॉड इज स्पीकिंग। मुरली को सुनो आप, वेदों की भाषा, हमारे विद्वान बैठे हैं हमारे शास्त्री जी, वेदों की क्लिष्ट भाषा है, इसको समझाने के लिए बड़े बड़े आचार्य चाहिए, वरना इधर उधर लो जोर तंगड़ के उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। जान लो आप, बहुत कठिन होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा आइंस्टाइन ने, जिसको आप बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते हो, उन्होंने कहा व्हेन द आंसर इज सिंपल थिंक गॉड इज स्पीकिंग। राइट? मुरली को सुनो, कितनी मुरली आसान। ओ मेरे मीठे मीठे बच्चे, आज कैसे हो? आज तुमने पढ़ाई की या नहीं की? वह कितनी सुंदर बात है, आज वही जरूरत है। मुझे कभी कभी ईर्ष्या भी होती है कि वाह रे वाह, ये इतना आसान मुरली करके और इतना अच्छा लोगों को समझा रहे हैं, अब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए भागवत कथा भारत ही नहीं दुनिया में पूरे लोकप्रिय हो गई, क्योंकि भागवत में रसमलाई डाल के कथा सुनाई जाती। राइट? रसमलाई डाल के उसके बाद आपका हरण कर लिया जाता है, हरण, सब कुछ हरण बरण। राइट सर? सो इसीलिए आज समझना पड़ेगा। और उन्होंने भागवत को कहा यह वेद है, वेद की मान्यता है। सब लोग कहा मांसाहार वेद में है, कहा लॉर्ड बुद्धा ने कहा। उन्होंने देखा लॉर्ड बुद्धा ऊपर से मांस का टुकड़ा आया, उन्होंने कहा कि ये मांस मेरे लिए अच्छा है, बस ठीक है, थैंक यू। सो ऐसा नहीं है, हमें भगवान बुद्ध को समझना पड़ेगा, हमें जीसस क्राइस्ट को उनके तक पहुंच तक समझना पड़ेगा, उन्होंने क्या कहा है। इसलिए ये चीजें बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव। अगर हालांकि सिलु दीदी ने बोल रही थी कि उनके ध्यान करने का मतलब है कि वो किसी का ध्यान कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन भगवान बुद्ध की गहराई में जाओगे तो उन्होंने यह कहा, यह स्पष्ट है, भगवान के बारे में पूछा गया कि भगवान है या नहीं, तो वो चुप रह गए। भगवान कोई व्याख्यान करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि साकार की व्याख्या की जाती है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जो निराकार परमात्मा है, ज्योति बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, उसकी व्याख्या असंभव है। इसलिए उपनिषद आता है, उपनिषद सामने, अब सुन, आपको जाना पड़ेगा। मनसा सह अप्राप्य यतो वाचो निवर्तन्ते, परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा, तो उपनिषद आके बोलता है यतो वाचो निवर्तन्ते मनसा सह अप्राप्य, जहां वाणी विराम हो जाती है, क्योंकि वाणी लिमिट का व्याख्यान कर सकती है, संभवतः नहीं भी कर सकती, लेकिन कर संभवतः कर सकती है लिमिट का, लेकिन लिमिटलेस का व्याख्यान, क्योंकि वाणी लिमिट है, वो कभी व्याख्यान नहीं कर सकती। तो उपनिषद तभी तो कहता है ना। तो भाइयों बहनों, ये सचमुच ग्रेस टाइम मुझे मिला, और कल भी मैं जब दादी के साथ बात किया था तो कल के न्यूज़पेपर में आया। अब कहोगे स्वामी जी आपका कैसे आता है? अगर आप चाहते हो सचमुच लोगों के प्रिय बनना, तो या तो आपको, सुन लो, इस दुनिया में मुकेश अंबानी बनना पड़ेगा, बयानंद दयानंद विवेकानंद बनना पड़ेगा, दादा लेखराज बनना पड़ेगा अगर बन सके तो। राइट? उसके बगैर कोई उपाय नहीं है। लाल कपड़ा पहनने से विवेकानंद कोई नहीं बन जाता, दयानंद कोई नहीं बन जाता, हां उसके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करने से थोड़ी बहुत सुविधाएं हमें मिल जाती है, लेकिन उस सुविधाओं में फंसना नहीं, उस सुविधाओं को भगवान का ग्रेस मानना, परमात्मा का ग्रेस मानना, और उस ग्रेस के आधार पे यह मानना कि हमें कैसे 10 गुना समाज को लौटाना है, राइट? और फिर देखो जितना दोगे 100 गुना मिलेगा, जितना दोगे और मिलेगा। इसीलिए तो बाबा रामदेव को पूरा टापू मिल गया, समझ में आया? आइलैंड मदर, या सो व्हाट। विवेकानंद को पूरे राजस्थान में ही कहां मिल गया? खेतड़ी में पूरा राजा महाराजा अजीत सिंह का महल मिल गया, हमको मिलेगा? गुलाब बाग उदयपुर में ऋषि दयानंद को पूरा नौलखा महल मिल गया, क्योंकि वह दयानंद बने, विवेकानंद बने, उन्होंने अपने स्वार्थ को सामने नहीं रखा, केवल राष्ट्र का कल्याण रखा, राष्ट्र देवो भव। और आज हमारे बाबा दादा लेखराज जी जो आज भारत को ऊंचा उठाना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा महान कार्य है। ताली तो मारो भाई, कम से कम आप क्या कह रहे हैं? मैंने देखता हूं भारत सुंदरतम देश है, इससे सुंदर देश यह स्वर्ग है, लेकिन इन लोगों ने, पाखंडियों ने इसे नरक बना दिया। और हमने वाइफ को क्या समझा? इंस्ट्रूमेंट समझ लिया, सिर्फ मौज मस्ती करने का इंस्ट्रूमेंट। अरे बाबा, पत्नी वो होती है जो आपको पतन से बचा दे। इसीलिए हम देखते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी में पहले पत्नी बनती है उसकी मेंबर, और उसके बाद धीरे धीरे अपने पति को भी लाती है और अलग रहने लगती है, यानी अलग मतलब साथ घर में रहती है, परंतु साथ दे प्रे टुगेदर बट दे डोंट लिव लाइक ए वाइफ हस्बैंड, राइट? दे लिव लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। ये क्वालिटी उत्पन्न करने के लिए वाह रे वाह, कितना बड़ा साहस करे चाहिए। और इन्होंने तो बंगाल की धरती पे, जहां की बगैर मछली का कोई दाल बनता नहीं है, वहां उन्होंने शाकाहारी शाकाहार भोजन का प्रचार कर दिया। सब लोग मछली मांस छोड़ के, यहां तक कि लहसुन प्याज छोड़ के इस बाबा की शरण में आ गए। इसलिए बहुत सुंदर बात है, ये इस सब चीज को देखो समझो। इसलिए आज के जमाने में हमको बनना पड़ेगा सेंसिटिव, एक संवेदनशील बनना पड़ेगा, एक दूसरों की आवश्यकता को समझना पड़ेगा। तो हम भी बने संवेदनशील। दीदी जी हमारी आ गई है, बहन जी, तो स्वामी जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत टाइम कम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे मृत्युंजय भाई, डॉक्टर मृत्युंजय, जिन्होंने हमें ग्रेस टाइम दिया, और दादी जी का सबका। और जो हम देखते हैं, जब मैं ध्यान करता हूं तो दादा लेखराज जी का जो आशीर्वाद है वो मुझे सूक्ष्म रूप से मिलता है। तभी मैं सितंबर में यहां आया 2017 में, और मैं एक महीने बाद मॉरिशस चला गया। हाँ, इस बार भी मैं जाने वाला हूं साउथ अफ्रीका, वो ग्रेस मिल गया अलग। और मैंने मॉरिशस में 4 सेंटर में टॉक किया, साउथ अफ्रीका जाऊंगा, वहां भी नेट पे सब मिलता है, वहां भी सेंटर पे टॉक करूंगा। सेंटर मतलब भोजन भी देती है दीदी लोग, अरे बात मत पूछो, भूखा रहता हूं, दीदी भोजन मिलेगा? हाँ, आइए आइए भैया, आइए भैया, वाह रे ग्रेट। मैं इस नमन करता हूं ये सारे दीदियों को। जब मैं हरिद्वार से आ रहा था तो अजमेर में भूख लगी, रात में भूख लग गई, वो भी बच्चा है, वो भोजन हमने का उपाय, हम तो भूख उसको भी तो बच्चा है ना। मैंने रात के 10 बजे फोन लगाया अजमेर, कौन थी शांता दीदी, ये कौन अजमेर की हेड है वहां, बोली दीदी ऐसा होगा कि मैं तो रात में तो भोजन नहीं किया, अब कहां खाएंगे, हम तो आपके साथ अब आ गए, तो ऐसा करें आप मॉर्निंग में 6:40 में कुछ भोजन खाने पीने का भेज दो, हमारे साथ एक छोटा बाबा भी है। हाँ हाँ स्वामी जी, डोंट वरी। एक भाई गोपाल कृष्ण वहां से भोजन लेकर के 6:40 में वहां आ गए, अपनी मुरली क्लास छोड़ के, और उन्होंने भोजन दिया और हम यहां पे आए, और तब फिर यहां का भोजन पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीदी लोग, भाई लोग आजीवन ब्रह्मचारी रह करके इतनी सेवा करते हैं, इसलिए मेरा कपड़ा लाल है मत समझना, मैं इनको प्रणाम करता हूं, राइट? समझो, लेकिन कल्चर है, मैं तो दादी को मैं प्रणाम करता हूं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें, तभी हमको भगवान मिलेगा, उसके पहले मुश्किल है। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, जोरदार तालियों से भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। जैसे भाई साहब ने कहा, वी आर प्लेइंग अ रोल, तो ब्रह्मा बाबा भी गुरु नहीं है, हम सब एक एक्टर हैं, वो एक निमित्त बने संस्था को स्थापन करने में। लेकिन यहाँ पर जो भाई साहब ने कहा, प्योरिटी को हम फॉलो करते हैं, बट हमारे थॉट्स में जब तक प्योरिटी नहीं आएगी तब तक हमारे रिश्तों में नहीं आ सकती है। तो अभी हमारे जो गेस्ट आए हैं उनका हम ईश्वरीय स्वागत से स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्वामी जी जो ओमकारानंद जी हैं, उनका स्वागत करेंगे जी। और जैसे भाई साहब ने कहा कि जब तक हमारे विचारों में शुद्धिकरण नहीं आएगा, रिश्ते बल वही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, रिश्ते वही हैं, लेकिन हमारे मेन विचारों में शुद्धता आनी चाहिए, रिश्ता वही रहता है। तो हमारे भाई साहब का बहुत बहुत, तो तालियों में कोई कंजूसी नहीं करें और सब 2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। आप सब जानते हैं कि जब कोई भी सेशन स्टार्ट होता है तो 2 मिनट पहले मेडिटेशन होता है और 2 मिनट बाद में मेडिटेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम स्टार्टिंग में 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो अपने मन को रिलैक्स करते हैं कि जो सेशन हो हम उसको सुन सकें, और जो बाद में 2 मिनट का मेडिटेशन होता है वो इसलिए करते हैं कि जो हमने सुना और हम यहाँ से जब उठें तो हम अपने साथ क्या लेकर के जा रहे हैं, तो इसलिए सब 2 मिनट मेडिटेशन करके उठेंगे। और अभी प्रोफेसर पीएन शास्त्री वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जी को सम्मानित किया गया, और अभी हमारी प्रोफेसर डॉक्टर नीनू टेकचंदानी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ताली में कोई कंजूसी ना करें, अभी इसके बाद सेशन ओवर है, तो हमारे मेहमानों का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अभी हमारे विवेकानंद भाई जो के अभी पतंजलि विद्यापीठ से पढ़ाई किया है और अभी ओमकारानंद जी से अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी समय निकाल कर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो इतने प्यार से यहाँ पर सब सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं होते तो स्टेज नहीं होता, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम 2 मिनट के लिए उस पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे।